نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. ان شاء الله تعالى آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 65 سے 74 تک سورۃ البقرہ. پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد، اور البتہ، تحقیق، یہ بار بار آئے گا لفظ، اور ایک ہی دفعہ اس کا معنی سمجھ لیں کہ یہ آتا ہے تاکید کے لیے، یعنی کسی بات کو جیسے ہم کہتے ہیں نا یقیناً ایسے ہوا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، شورلی، تو وہ والا معنی یہ دیتا ہے. البتہ تحقیق، علم تم، علم سے ہے، جان لیا تم نے، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا، اعتدوا بھی عدو سے ہی ہے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا عدو دشمن کو کہتے ہیں، تو دشمنی کے لیے آیا تھا، تو اسی طرح دشمن زیادتی کرتا ہے، تو جنہوں نے زیادتی کی، منکم، تم میں سے، فی سبد، سبد میں، سبد کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کاٹنا. یہ دن یہود کا تھا، ریلیجس ڈے جس کو کہیں، عبادت کا دن، تو اس میں سارے باقی دنیاوی کام کاٹ دیے جاتے تھے. ہم تیسویں پارے میں بھی پڑھتے ہیں، وجعلنا نومکم سباتا، نوم جو ہے، نیند جو ہے، وہ ہر کام سے کاٹ دیتی ہے. فقلنا، تو کہا ہم نے، لہم، ان سے، میں نے آپ کو بتایا تھا قل، قلنا، ان سب کے بعد جب بھی لا آئے تو سے کا معنی کرنا ہے، ان سے، کونو، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے تو ہو جاتا ہے، تو کن کا مطلب ہو جاؤ، اور کونو تم سارے ہو جاؤ، یہ پلورل کے لیے جمع کا ہے، وہی جو کن ہے نا، ہو جا، تو یہ کونو اسی کی جمع، ہو جاؤ، یعنی سب. قرادتن، قراد بندر کو کہتے ہیں. خاسئین، خاسین حمزہ سے، دھتکارے ہوئے، جیسے کتے یا ان کو کہتے ہیں نا، ہوش ہوش دھتکارتے ہیں ان کو، وہ ہوتا ہے. فجعلناها، اب لمبا ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس کو پہلے ڈیوائیڈ کریں چار پورشنز میں. ف الگ کریں، جعل الگ کریں، نا اور ہا، ٹھیک ہے. ف تو، جعل بنا دیا، نا ہم نے، ہا ان کو، ٹھیک ہے. ہا کی ضمیر ہے، کن کو بنا دیا؟ قرادہ کو، یہ یا اس واقعے کو. ہا کی ضمیر اس طرف جا رہی جو پچھلی بات ہے. نکالن، نکال عبرت کے لیے آتا ہے، یعنی سبق سکھا دینا، اور نکال سے مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کسی کو عبرت ناک سبق دینا کہ دوسرا ڈر جائے کبھی دوبارہ وہ کام کرنے سے. لیما، لیے اس کے جو، لیے ماں جو، یعنی لیے اس کے جو، بینا یا دئیہ، بینا درمیان، یا دئین تھا، نون گر گیا کیونکہ ہا لگ گئی ہے، یا دئین یعنی دونوں ہاتھوں کے، ہا ان کے. اب یہ بینا یا دئیہ کا معنی کیا ہوا؟ دونوں ہاتھوں کے آگے مطلب کیا؟ جو چیز آپ کے دونوں ہاتھوں میں ہوتی ہے، دونوں ہاتھوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ آپ کے آگے ہوتی ہے، رائٹ، آپ کے سامنے ہوتی ہے. تو اس سے مطلب کیا؟ ان کے آگے جو تھے، یعنی جو اس زمانے میں موجود تھے. تو آپ ترجمے میں یہ نہیں لکھیں گے دونوں ہاتھوں کے آگے، یہ ایک محاورتن استعمال ہوتا تھا عربک میں آگے کے لیے، ان کے آگے جو تھے. وما خلفہا، اور جو پیچھے تھے. وموعظتن، اور موعظہ کس سے؟ واو عین ذو، یہ ذوئے جو ہے، واز، اس سے واز بنتا ہے نا. واز کیا ہوتا ہے؟ उसी से मवाइदा बना, यानी ऐसी नसीहत जिससे दिल पिघल जाए, दिल नरम हो जाए। लिल मुत्तकीन, ली लिल का जो अल मुत्तकीन ही आया, लिल मुत्तकीन आया, ली जो शुरू का है वो किस लिए, मुत्तकीन के। वह इज कौला, और जब कहा मूसा अलैहि सलाम ने, ली कौमी ही अपनी कौम से, देखें आगे लिया है ना काला के बाद, तो से कौमी कौम ही उसकी यानी अपनी कौम से, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला, या मुरु कुम, या मुरु अमर से है, अमर देता है यानी हुक्म देता है कुम तुमको। अच्छा आप देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था इन्ना और अन्ना जो है सेम ही माना होता है, लेकिन जब काला के बाद आएगा हमेशा तो इन्ना आएगा, और बात के बीच में आएगा तो वरना ज्यादातर अन्ना आएगा, शुरू में आएगा तो इन्ना आएगा। ठीक है, जब आयत शुरू हो रही हो तो इन्ना आएगा, बीच में अन्ना आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, और उन उसकी वजूहात हैं। और एक वजह यह है कि उससे पहले अगर काला कीला यकूलू या काला से बने हुए कोई भी लफ्ज है वो आए तो उसके बाद इन्ना ही आएगा। ठीक है, अगर नहीं भी ये बात समझ आती तो कोई मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज आपको इन्ना का माना आता है तो ठीक है। अन ये के तज़बहू, तुम ज़िबा करो, बकरा एक गाय को, ये सूरा का नाम अल बकरा इसी से है। कालू उन्होंने कहा, अ क्या तत्तखिदु तुम करते हो ना हमारे साथ हमसे हुजुआ, मजाक, इस्तेजा होता है ना मजाक, उसी से समझ लिए। काला उसने कहा यानी मूसा अलैहि सलाम ने, आऊदू मैं पनाह मांगता हूं, बिल्लाह अल्लाह की, अन के अकूना मैं हो जाऊं, मिन से अल जाहिलीन जाहिलों, जाहिलों में से हो जाऊं। कालू उन्होंने कहा, उदाऊ दुआ करो, उदाऊ दुआ करो, यानी ये फेले अमर है, लाना लिए हमारे, मैंने आपको बताया था ना एंड में आ जाए तो हम हमारे इस तरह का माना होगा, रब्बा का रब से, का तेरे यानी अपने रब से तू दुआ कर, युबय्यिन बयान कर दे वो, लना लिए हमारे, ला लिए के लिए भी आता है और भी माने हैं, लेकिन जैसे अभी हमने लकद में पढ़ा अलबत्ता इसका माना, या ताकीद के लिए भी आता है और भी माने हैं, लेकिन एक माना ला का क्या है, लिए, ना हमारे। माँ कैसी हो, हिया वो, हुआ नहीं आया, हुआ का ही मुअन्नस हिया है, हुआ मुजक्कर के लिए आता है, हिया मुअन्नस के लिए, यहाँ पे किस चीज के लिए आया, बकरा के लिए, बकरा आप देख रहे हैं ना कि वो मुअन्नस है, ताए मरबूता एंड में लग जाए, ये गोल था तो इसका मतलब वो मुअन्नस है, तो अब मुअन्नस की जमीर आएगी ना, जैसे हम कहते हैं शी और ही, या हर या हिज, तो फर्क है ना। काला कहा, इन्नहू बेशक वो, यकूलू फरमाता है, अब यकूलूना भी पढ़ेंगे आगे, यकूलूना, तो यकूलूना में और यकूलू में क्या फर्क है, वाउनून लग जाए तो जमा है, अब यहां पे वाउनून नहीं है तो वो फरमाता है, वो फरमाते हैं या वो कहते हैं, नहीं है, इन्नहा बेशक वो, हा की जमीर फिर किस तरफ जा रही है, प्रोनाउन किस तरफ जा रही है, गाय की तरफ, बकरतुन ऐसी गाय हो, ला नहीं, फारिदुन फारिद फर्द उसे, फरादा कहते हैं काटने को, काम होने को, यानी उसने अपनी जवानी काट दी हो, तो बूढ़ी यानी बूढ़ी, वाला और ना बिक्र बिल्कुल बाकिरा जैसे बहुत ही जवान सी, आवानुन दरमियानी हो, बईना दालिक बईना दरमियान, दालिक इसके यानी दरमियानी उम्र की हो, बईना दालिक इसके दरमियान, फ तो इफालू करो, फेल से है ना काम का करना, माँ जो तु मारून, तु मारून में बीच में क्या है, वाउनून को तो हटा के सोचे बीच में क्या है, हमजा मीम रॉ यानी अमर है ना, तो अमर का माना क्या होता है, हुक्म। तो ता शुरू में आ गई, तुम हुक्म दिए जाते हो, तु मारून मजहूल है ना, जिनको मजहूल मारूफ का पता है वो लिख लें कि मजहूल है, जिनको अभी नहीं पता तो वो परेशान ना हो। मजहूल की निशानी क्या है, शुरू में पेश है, सेकंड लास्ट लेटर मीम के ऊपर जबर है। कालू, उन्होंने कहा, उदुउलाना, दुआ करो हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन, वो बयान करे, लना लिए हमारे। अब देखें इतनी बात बार बार सेम ही आ रही है, ठीक है। काल उदुउलाना रब्बा का, युबय्यिन लना, ये सारा वही है जो पहले गुजरा है। मा लाउनुहा, माँ क्या है, ये एक ही लफ्ज नहीं है, मा लाउनुहा नहीं, माँ क्या है, कैसा है, लाउन रंग, हा उसका, लाउन कहते हैं रंग को। कौला, कहा, इन्नहू, बेशक वो, यकूलू, वो फरमाता है, इन्नहा, बेशक वो, बकरतुन, एक गाय है, सफरा, सफरा असफर समझते हैं, असफर, असफर कहते हैं येलो कलर को, ठीक है, सफरा उसी का मुअन्नस है, यानी अरेबिक में जो कलर्स हैं इनके भी मुअन्नस और मुजक्कर है, ठीक है, जैसे अस्वद का सौदा, अबियत का बैदो, ठीक है, तो असफर का सफरा। तो सफरा क्यों कहा, मोनस क्यों कहा, क्योंकि गाय भी मोनस है, इसलिए ये भी मोनस हो गया, जर्द रंग की। फाके उन, फाके, फाके का मतलब चमकीला, गहरा चमकीला। लौनू, लौन रंग, हा उसका, तसुरु, तसुर सुरूर से है, सुरूर होता है ना अच्छा लगना, मजा आना, तो खुश करती हो, भली लगती हो। अन्नाजरीन, हम कहते हैं नाजरीन कराम, आप सुनते हैं खबरों में टीवी में नाजरीन, तो नाजिर कौन होता है, नजर से है ना, देखने वाला, नाजरीन देखने वाले, ये उर्दू में भी आता है। कालू, उन्होंने कहा, औदु औलाना, दुआ करो हमारे लिए रब्बा का अपने रब से, युबय्यिन लाना, वो बयान करे हमारे लिए, मा हिया, कैसी है वो। अब ये सेम टू सेम वो ही बात है जो हम 68 आयत में शुरू में देखी है, तो इसलिए इसका तर्जुमा आप उसी से ले लें। इन्नल बकरा, बेशक गायें, तशाबहा, गायें प्लूरल है, तशाबहा, मुतशाबे यानी मुश्तबे हो गई हैं हमारे लिए, यानी गड़मड़ हो गई हैं, अलैना हमारे लिए, यानी ऊपर हमारे, यानी हमारे लिए। वह इन्ना, और बेशक हम, इंशा अल्लाह, अगर चाह अल्लाह ने, ये वही इंशा अल्लाह है जो हम कहते हैं इंशा अल्लाह, लमोहतदून, अलबत्ता मोहतद हिदायत से है, हिदायत पा लेने वाले हैं, मोहतद जिसको हिदायत मिल गई हो। काला, कहा, इन्नहु, बेशक वो, यकूलू, वो फरमाता है, इन्नहा, बेशक वो, बकारा तो उन ऐसी गाय हो, ला दलून, नहीं, दलूल किससे, जिल्ला से, मुतीर, तुसीर, तुसीर सऊर से है, यानी जिसको कहते ना जोतना, जमीन को जोतना, यानी हल चलाने, जमीन को फाड़ना, आपने देखा है कि आगे आगे वो बैल और गायें लगाई होती हैं और पीछे वो टिलर लगाया होता है और वो हल जोतती हैं खेती में ना, जमीन को नरम करती हैं, फिर उसके बाद ही उसके ऊपर बीज डाला जाता है। तो तुसीरुल अर्द, फाड़ती हो जमीन को, वला, और ना, तस्की, सिकाया, सकी, सुना होगा, सुकिया, पानी पिलाती हो, सुकिया जमजम, तो पानी पिलाती, अलहर्थ खेती को, हर्ष खेती को कहते हैं, मुसल्लमतुन, मुसल्लम जिस तरह हम कहते हैं कि मुर्ग मुसल्लम है, तो वो कैसा मुर्ग होता है, मुर्ग मुसल्लम, ये तो सभी को पता होगा, मुर्ग मुसल्लम कैसा होता है, वो होल चिकन को कहते हैं, तो यानी बिल्कुल सही सलामत, जो पूरा का पूरा एज इट इज होता है, तो सलामती से ये सीन लाम मीम से ही है, तो यानी सही सलामत हो। ला शिया था, ला नहीं, शिया, शिया का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी बेनिशान, कोई निशान नहीं जिसमें, शिया किसको कहते हैं? निशान को। तो ला शिया, नहीं कोई निशान। फीहा, इसमें। कालू, उन्होंने कहा, अल आन, अब। जीता, जीता वैसे आने के लिए होता है, जा आना होता है, लेकिन आगे बी आ जाए तो माना क्या बन जाता है? लाने का। जीता, ता के ऊपर जबर है, तू लाया है। आपको पहले बताया था ना, अमता से याद रखें, वो आसान है याद रखना। तू ने इनाम किया, तो ता के ऊपर एंड में जब भी जबर होगी तो क्या मतलब होगा? तू, फेल के साथ लगा होकर, तू लाया है। बिल हक, हक को। फ, तो। ज़बहू, उन्होंने जिबा किया, हा उसको, वा और, मा नहीं, कादू, कादू या कादू का मतलब क्या होता है? कादा या कादू का मतलब क्या होता है? यानी किसी काम को अनकरीब करना, जल्दी करना। तो कादू लगते थे कि यफ़अलून, वो करते, यानी करीब लगते थे कि वो करते उस काम को। और मां आ गया तो नहीं। व इज कतल तुम, और जब कतल किया तुमने नफसन, एक नफ्स को, एक जान को, फद्दारा तुम, दारा उन कहते हैं फेंकने को, तो एक दूसरे, फद्दारा तुम जब ऐसे करके आएगा तो एक दूसरे के ऊपर डालना, तुम आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम दे रहे थे। फीहा, इसमें। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, मुखरिजुन, निकालने वाला था, मा जो, कुन तुम थे, तुम तक तुमून, तुम छुपाते, कतमा से। फकुलना, बस कहा हमने, इद्रिबू, मारो, हु उसको, बी साथ, बाद, बाज के, हा उसके, साथ उसके, बाज के। कदालिका, इसी तरह, युहयिल्लाहु, युहयी, जिंदा करता है अल्लाह ताला, अल्मौता, मुर्दों को, व युरीकुम, रआ होता है देखना, युरी वो दिखाता है, कुम तुमको, आयाती ही, आयात उसकी, यानी अपनी आयात, अपनी निशानी। आयत क्या होती है? निशानी। आयात उसकी जमा है, तो आयात निशानियां अपनी। लअल्लकुम, ताकि तुम, ताकिलून, तुम अकल से काम लो। सुम, फिर, कसत, कस, वह कहते हैं सख्ती को, कसत, सख्त हो गए, कुलूब, दिल, कुम तुम्हारे, मिम बादी तालिका, इसके बाद, फ, तो, हिया वो, हिया की जमीर भी किस तरफ जा रही है? हिया की जमीर कुलूब की तरफ। कल हिजारा, क मानिंद, अल हिजारा, पत्थरों के, पत्थरों की तरह हो गए। औ या, अशद्दा, ज्यादा शदीद, कसवा, सख्ती में। मैंने आपको कहा ना, कसवा सख्ती को कहते हैं, उसी से ये आगे फेल आया था जो पहले गुजरा है, कसत, सख्त हो गए। वह इन, और बेशक, मिनल हिजारती, पत्थरों में से, लमा यकीनन, जो, ला यकीन, मैंने आपको बताया ना, अलबत्ता कह लें या यकीनन कह लें, जो लकद में आपको बताया, तो ला का माना यहां पे क्या होगा? यकीनन या अलबत्ता, मां जो, यतफज्जर, फूट पड़ती है फजर से। फजर मतलब बड़े पैमाने पर फूटना, फूट पड़ती है। मिन हु, उससे, अल अनहार, नहरें। व इन्ना, और बेशक, मिन हा, इन से, मिन से, हा उन, उन में से, यानी बाज, लमा यकीनन, जो, यशक्ककु, शक से है, शक हो जाती है, फट जाते हैं, फट जाता है, फयख रुजू, फिर निकलता है, खारिज होना, निकल आता है, मिन हु, इससे, अलमा, पानी। व इन्ना, और बेशक, मिन हा, इन में से, यानी बाज, लमा यकीनन, जो, यह भी तू, यह भी तू, तो पहले पढ़ा ना, यह भी तू मिसरन, और अल्लाह ताला ने भी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा से फरमाया, ए भी तू, ठीक है, तो यह भी तू गिर पड़ता है, मिन खशियतिल्लाह, मिन से, खशिया, खशियत, खौफ अल्लाह के, वम अल्लाह और नहीं अल्लाह भी गाफिल इन गाफिल अम्मा, अम्मा को भी स्प्लिट करें, अन और मा, नून गिर गया क्योंकि मा साथ लगा है ना, और मर्ज होने से अम्मा बन गया, अम्मा कहना तो बड़ा मुश्किल था ना, अम्मा तो अम्मा बन गया, अन से मा जो, उससे जो, तामलून तुम अमल करते हो। अब हो सकता है आपको कुछ अल्फाज आज मुश्किल लग रहे हो, खास तौर पे जो नए आने वाले लोग हैं, मगर आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, एक दिन यही अल्फाज आपके लिए इतने आसान होंगे कि आप कहेंगे इसमें तो कोई मुश्किल ही नहीं है, बशर्ते के आप घबरा के भागे नहीं, और इसको अच्छे से याद कर लें, और उसके बाद आप देखेंगे बार बार यही अल्फाज आएंगे, और एक दिन आपको ये अल्फाज ऐसे ही लगेंगे जैसे आप उर्दू ही पढ़ रहे हैं। जी हाँ, इंशाल्लाह होता ना। लेकिन मैंने आपको बताया शर्त क्या है, कि आप चलते रहेंगे, घबरा के भागेंगे नहीं कि मुझे नहीं आ रहा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो ऐसे है, नहीं, एटलीस्ट 5 टाइम्स अ डे आपने इस तर्जुमे को गौर से पढ़ना है, एक एक लफ्ज को, जैसे मैंने आपको बताया एक एक लफ्ज का माना उस तरह से, और उर्दू का जो लफ्ज है वो जहन में जरूर रखें, जब आप उर्दू का लफ्ज जहन में रखेंगे तो फिर कोई भी लफ्ज आपको मुश्किल नहीं लगेगा। देखिए आप कल हिजारा का, जैसे का माना होता है जैसे, जैसे हमने कम अथली पढ़ा, अगर आपने पिछला सबक याद किया बच्चा, तो कम अथली जैसे की मिसाल, तो का तो पहले पढ़ा हुआ है, अगले हिजारा क्या है, हिजर से है, हिजरे अस्वद हम बोलते हैं, तो हिजर तो पत्थर को कहते हैं, तो उसी से हिजारा है, इसी तरह कुलूब कल्ब है, ठीक है, हमने तख्तुमून पहले पढ़ा है, मुखरिज खारिज से है, वो भी उर्दू में पढ़ते हैं, जरब लगाना भी उर्दू में, यो ये हई और कयूम पता है हमें, मौता मुर्दे को कहते हैं, आयात हमें पता है, निशानी होती है, अकल भी पता है, अमल भी पता है, माँ पानी का सबको पता है। तो देखें इस पेज में कुछ नहीं, अनहार नहरें उर्दू में भी बोलते हैं, अशद्दा शदीद वो भी बोलते हैं, फजर भी बोलते हैं, अर्द भी बोलते हैं, जमीन पता है, ज़िबा करना वैसे ही हम बोलते हैं, तो फिर क्या क्या चीजें सिर्फ नहीं है, जैसे शिया हो गया, या हर्स हो गया, फारिद हो गया, बिकर हो गया, अवान हो गया, इन लफ्जों को फिर अलग से लिख लें। नाजरीन आपको पता है, जिनको अरबिक के कलर्स पता है उनको पता होगा कि असफर येलो को कहते हैं, तसुर सुरूर से, अब वो तो उर्दू में भी होता है, तुसीर हाँ हल चलाना, ये एक नया लफ्ज है आपके लिए, इस तरह से और क्या नया लफ्ज है, नक्यालन आपके लिए ये नया लफ्ज है, यहाँ सब्त हो सकता है नया लफ्ज हो, खासेन ये नए अल्फाज हैं, ठीक है, बाकी उर्दू के साथ ही मिलते जुलते अल्फाज हैं सारे, मौइज़ा वाज से अब वो उर्दू में भी हम बोलते हैं, तो ये आप जब रिलेट करेंगे ना तो फिर इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसान हो जाएगा इसको याद करना। देखते हैं आज का लेसन हम अपना, तफसीर आयत 65 से 74 तक इंशाल्लाह, जैसे कि हमारा मौजू चल रहा है, हम अभी तक देख रहे हैं जब से हमने ये बनी इसराइल के बारे में जो वाकयात हैं ये पढ़ने शुरू किए हैं, तो मैंने आपको बताया था इस सिपारे के एंड तक आप उन्हीं वाकयात को देखते रहेंगे, अल्लाह ताला गोया के बता रहे हैं कि मैंने ये किया तुमने ये किया, मैंने ये किया तुमने ये किया, और आपने पहले पढ़ा मनोसलवा दिया कैसे इनको एक बस्ती के अंदर, जिसकी यानी जो इनका असल में एम था कि बैतुल मकदस में दाखिल हो जाएं, उसके अंदर इनके लिए आसानी कर दी कि तुम दाखिल हो जाओ, और इन्होंने आगे से क्या किया, अल्लाह ने चश्मे इनके लिए फाड़ दिए, अल्लाह ताला ने इनके लिए बादलों का साया कर दिया, और इनकी हरकतें कैसी थी, और मैंने आपको कहा था कि कोई अगर याद कर सके, अस्तस्तब्दिलून अल्लदी हुआ अदना बिल्लदी हुआ खैर, तो इसको याद कर ले और जिंदगी में देखें कहां कहां बदल रहे हैं हम, अदना ले रहे हैं और खैर को छोड़ रहे हैं, आंखें अल्लाह ने दी हैं किस लिए, अल्लाह की निशानियों को देखो, अल्लाह के कुरान को पढ़ो, हम क्या करते हैं अदना ले लेते हैं, अदना इससे कभी टीवी देख रहे हैं, कभी फोन पे लगे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह ताला की बात है वो देखने की फुर्सत नहीं, कानों से हर चीज सुन रहे हैं लेकिन अल्लाह के कलाम को सुनने की फुर्सत नहीं, अल्लाह की बातें सुनने की फुर्सत नहीं, तो क्या कर रहे हैं जिंदगी में, सौदे कर रहे हैं ना, जगह जगह सौदे कर रहे हैं, वक्त मिला हुआ है इसको कहाँ गुजार रहे हैं, अदना में या खैर दे के अदना ले रहे हैं, वो वक्त गुजार सकते हैं आप किसी कंस्ट्रक्टिव काम में, किसी अच्छे काम में जो आपकी आखिरत के लिए काम आ सके, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं? तो जगह जगह यही काम कर रहे हैं। कई लोग हैं जो के बीवियों को छोड़ के और हराम जगह पे जाके अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। क्या करते हैं वो? खैर को छोड़ के अदना लेते हैं। तो ये बात ऐसा यानी एक यूनिवर्सल एक फैक्ट है कि जो जब आप इसको याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कितनी जगहों पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम ये काम कर रहे हैं, फिर इसको तर्क करना आसान हो जाता है। और आज भी हम दो किस्से देखेंगे, दो किस्से, और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन भी देखेंगे, आयत 74 में कंक्लूजन। लेकिन वो दो किस्से भी इन्हीं की हरकत को बताते हैं कि इनकी कैसी नेचर बन चुकी थी, कैसे ये अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे जो इनके एटीट्यूड थे ना, वो कैसे थे। जब अल्लाह का कोई हुक्म आता था तो सहाबा कराम का एटीट्यूड क्या होता था? समेना व अताना। अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे, हमने सुन लिया, हमने मान लिया, बस अगली कोई बात नहीं। और इनके एटीट्यूड क्या होते थे? आप आयत नंबर 65 और 66 में एक वाकया देखेंगे, उसके बाद 67 से 73 तक आप दूसरा वाकया देखेंगे। दोनों में अल्लाह ताला के हुक्मों के आगे जो इनका बिहेवियर था वो बताया गया। दो ही वाकयात आज हमने देखने, और फिर हमने देखना है कि हम जब अल्लाह ताला के हुक्मों को सुनते हैं तो हमारे क्या बिहेवियर्स होते हैं, क्या इनसे सिमिलर होते हैं या सहाबा से सिमिलर होते हैं, होने किससे सिमिलर चाहिए। हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो असलाफ हैं, वो तो हमारे सहाबा कराम है, ताबईन है। हमने उनको कॉपी करने की बजाय इनको कॉपी करना शुरू कर दिया, जो मगदूबी अलैहिम है, जिनकी अल्लाह ताला ने यहां पे बातें बताई हैं कि ये क्या क्या करते थे। तो अपने बिहेवियर्स को शिफ्ट करना है, उनकी जिंदगियों को अपनाना है, और यहां से ये चीजें सीख के कभी कभी इंसान को देखे अपनी गलतियों का पता नहीं चलता। कभी कभी इंसान अपनी खुद को काम कर रहा होता है लेकिन नहीं समझता, लेकिन जब उसको किसी मिसाल से बताया जाता है ना, जैसे आप कहते हैं अपने बच्चे को, बेटे फलां की तरह नहीं बनना, फलां देखो फलां ऐसे ऐसे करा, ऐसे उसने किया, तो आपके लिए एक वार्निंग हो जाती है कि हाँ मैं भी तो ऐसे करता हूँ, देखो वो अपना वक्त जाया करता है, वो ये करता है, वो उधर, तो आपको फिर एहसास होता है कि वो तो मैं भी कर रहा हूँ, ये गलत की काम है। इसी तरह यहां पर उनकी मिसाल दी गई है, उनकी कुछ चीजों को हाईलाइट किया गया है कि देखो अल्लाह के हुक्मों के आगे वो उनके बिहेवियर कैसे होते थे, तुमने ऐसे नहीं करना, ठीक है? वरना हमें कोई ऐसी कहानियां नहीं सुनाई जा रही कि हमने कहानी सुन ली, अच्छा, यहूदियों की कहानी, वो तो ऐसे थे, उसके बाद क्या? तो देखते हैं पहला किस्सा, वलकद अलिम तुमुल्लदीन अतदौ मिनकुम फिस्सबत, अलबत्ता तहकीक, और अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने, यानी तुम अच्छी तरह जानते हो, अल्लदीना उन लोगों को, किन को, एतधौ जिन्होंने ज्यादती की, मिनकुम तुम में से, फिस्सबत सफ्ते के दिन के बारे में, यानी तुम में ऐसे भी लोग गुजरे जिन्होंने हफ्ते के दिन के बारे में ज्यादती की। और ये बताया जा रहा है यहूद मदीना को भी, और उसके बाद हम सब के लिए भी एक नसीहत है, उनको बताया जा रहा है तुम में से ही थे, तुम अच्छी तरह जानते हो, हालांकि उनकी तौरात में नहीं था ये, तो ये कैसे फिर जानते थे? जुबान दर जुबान इनके आगे चला आ रहा था ये किस्सा कि किस तरह से हुआ था, क्योंकि कुरआने पाक में जैसे डिटेल है ना इस किस्से की, इनको भी नहीं ऐसे पता था, तो इनको भी कुरान से ही पता चला इसकी डिटेल, मगर ये वो जानते थे अच्छी तरह कि हमारे बड़ों में से एक ऐसे गुजरे हैं। तो क्या हुआ था, ये थोड़ा सा वाकया पहले मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड मालूम हो। हुआ ये कि एक बस्ती थी, कहा जाता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये बस्ती थी, और इसमें ये एक यानी समंदर के किनारे रहते थे लोग, इला इस बस्ती का नाम था, और इन लोगों को का जो पेशा था, प्रोफेशन था, वो मछलियां पकड़ना था, मछलियों का शिकार करके, जैसे मछेरे हैं वो मछलियां बेचते हैं। अब इनके लिए सैटरडे एक ऐसा दिन था जिसके बारे में कहा गया था कि आपने इसमें कोई ये कारोबार, जॉब, ऐसा कोई काम नहीं करना, आपने सिर्फ ये दिन अल्लाह की इबादत के लिए रखना। जैसे हमारे लिए भी एक दिन है, मगर हमारे लिए घड़ी है, और वो है जुमे की घड़ी, यानी जुमे का जो टाइम है ना, उस पे हमें भी कहा गया कि आप काम कारोबार छोड़ दो और जुमे के लिए जाओ। ठीक है, तो इनके लिए पूरा दिन था, हमें तो ये इजाजत है कि जुमे के बाद अब आप निकलो और फिर उसके बाद अपने काम काज करो, आप आगे इंशाल्लाह ताला सूरह जुमा में पढ़ेंगे। लेकिन इनको कहा गया था पूरा सैटरडे का दिन आपने कोई काम नहीं करना, कोई शिकार, कोई यानी कारोबार नहीं करना। अब क्या हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, और आजमाइश क्या थी कि हफ्ते वाले दिन इस कदर मछलियां आती थी, इतनी मछलियां आती थी कि पानी के ऊपर उछलती कूदती थी, बाकी दिनों में कोई इतनी नजर नहीं आती थी। अब ये देखते थे, दिल तो ललचाता था कि आए आज हम पकड़ नहीं सकते और आज कितनी मछली है। अब एक जमाने तक तो ठीक है, खामोश रहे कि भाई हमें मना किया गया, रुके रहे, लेकिन फिर इन्होंने एक हीला निकाला। हीला क्या चीज को कहते हैं, क्या एक्सक्यूज निकाला, एक रास्ता निकाला इन्होंने, कि इन्होंने कहा ठीक है हम हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ सकते, तो इन्होंने समंदर के किनारे ना गड़े खोद दिए, और बाज जगह आता है इन्होंने जाल डाल दिए समंदर के अंदर, बाज जगह आता है गड़े खोद दिए। तो जब गड़े खोद दिए, तो जब समंदर यानी तेज, तो यानी आती थी समंदर तेज आगे आता है, तो वो उसके साथ मछलियां भी आके उस गड़े में गिर जाती थी। अब समंदर तो वापस चला जाता है ना, लेकिन मछलियां उसी गड़े में रह जाती थी, और ये संडे को फिर पकड़ लेते थे। और जहां पे आता है कि ये जाल डालते थे, तो जाल फ्राइडे को डाल दिया, सैटरडे को तो कुछ नहीं किया, जाल में मछली फंस गई, संडे को निकाल ली, बात तो वही हो गई ना। अब इन्होंने जब ये हीला किया, तो कुछ लोगों ने, सारी सारी बस्ती ने नहीं किया था, कुछ लोगों ने ऐसा किया, और कुछ लोग थे जिन्होंने इनको कहा कि देखो ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें मना किया गया है, तो उनको मना करने लगे। लेकिन उनका जवाब क्या होता था, हम हफ्ते के दिन तो नहीं ना कुछ कर रहे, हम तो इतवार वाले दिन पकड़ते हैं। और एक तीसरा भी ग्रोह था, यानी तीन ग्रोह हो गए इस कौम में, ये बात को जरा गौर से सुनिएगा, तीन ग्रोह, एक पकड़ता था, एक ना सही लोग थे, मुत्तकी लोग थे, अल्लाह से डरने वाले थे, कहते ना ये काम ना करो। तीसरा एक ग्रोह क्या था, कहते थे माइंड योर ओन बिजनेस, तुम्हें क्या, तुम क्यों इनको नसीहतें करने लगे हुए हो, अपना काम करो, जाओ करते हैं तो करते रहे, वो उनका और अल्लाह का मामला, तुम्हें क्या इससे, तुम क्यों मना करते हो उनको। मसलहत के तहत तुम अपने करो, वो अपने कर रहे हैं जो करते रहे, वो खुद तो नहीं करते थे लेकिन मना भी नहीं करते थे। ठीक है, ये थर्ड ग्रुप की बात सुने, ये खुद नहीं करते थे लेकिन किसी को कुछ कहते भी नहीं थे, और इनको कहते थे तुम क्यों आवाज कर रहे हो, अगर खुद ही अल्लाह उनको हलाक कर देगा, खुद ही उनको अजाब दे देगा, जब नहीं मानते छोड़ो इनको। तो वो आगे से जवाब देते थे कि एक इसलिए हम कहते हैं कि अल्लाह के हाँ कम अज कम हम माजूर हो जाएं कि अल्लाह हमने बता दिया था, नंबर टू ये शायद आज नहीं तो कल ये मान जाए और अल्लाह के अजाब से बच जाए। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक ये इस तरह से काम चलता रहा, उन्होंने भी नहीं सुनी इनकी नसीहत। अब एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग जो ये मछलियां पकड़ते थे, वो अपने घरों से नहीं निकले। जब ज्यादा देर हो गई तो लोगों ने जाके देखा, तो अजीब ही मंजर देखा कि वो सारे के सारे लोग, सारे आदमी औरतें सब लोग वो बंदर बन चुके थे, और इनके घर जो इसी तरह बंद थे रात के, वो उसी तरह बंद थे, और अंदर ये हो चुका था, ऐसे बंदर थे, उनकी दुमे भी थी, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, और हर एक को पहचाना जा सकता था कि ये फलां है, ये फलां है, ये फलां है। और जब इंसान पूछ सकता है कि भाई क्या ये वही थे? हाँ वो ही थे, इसलिए कि जब वो उनके पास जाते थे और उनसे कहते थे कि तुम्हें हम मना नहीं करते थे, तुम्हें हम कहते नहीं थे, तो वो आगे से हाँ करते थे और रोते थे अपने रिश्तेदारों को पहचान के, अपने लोगों को उनके करीब जा जाके रोते थे। अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। फिर उसके बाद ये 3 दिन तक जिंदा रहे और उसके बाद ये सारे के सारे मर गए। ना उनकी आगे कोई नस्ल चली, ना कोई कुछ। हम ये नहीं कह सकते कि आज के जो बंदर हैं ये वो ही उनकी नस्ल चल रही है, ऐसा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जब किसी कौम में सूरत को मस्क करने का अजाब देता है तो उनकी नस्ल नहीं चलती, वो खत्म हो जाते हैं फिर। तो इसलिए ना आज के यहूदियों का उनसे कोई ऐसा है कि ये उनकी नस्ल से आ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, अस्तग़फिरुल्लाहि रब्बी। तो अब हम देखते हैं इन आयात को ताकि आपको अब समझ आएगी इंशाल्लाह। यहां पे ये मुख्तसर है, अगर किसी ने इसकी और डिटेल कुरान में पढ़नी है तो सूरह आराफ में पढ़ सकता है, इंशाल्लाह वहां जाएंगे तो हम और भी इसकी डिटेल कुरान से ही पढ़ेंगे। वलकद अलिमतुमुल लदीन आतदौ मिनकुम फिस्सब्त, तो कि अलबत्ता तहकीक जान लिया तुमने, तुम्हें पता है उन लोगों का जिन्होंने ज्यादती की तुम में से सब्त के दिन के बारे में। फकुलना, तो कहा हमने लहुम उनसे, कूनू क़िरदतन ख़ासीन, तुम सब हो जाओ बंदर धुतकारे हुए, मसख शुदा, यानी तुम अब धुतकारे हुए बंदर, यानी ये एक तरह इनकी सजा थी कि अब तुम बंदर बन जाओ। अल्लाह ताला ने ये हुक्म इनके लिए कर दिया कि अब तुम, यानी अल्लाह ताला का ये भी एक, यानी एक कानून है कि अल्लाह ताला जो, यानी ऐसे लोग हैं जो लोग हीला साजी करते हैं, अल्लाह ताला को वो इतनी नागवार है। एक है अल्लाह के हुक्म को तोड़ना, एक है उसके अंदर हीला साजी करना, यानी एक्सक्यूजेस निकाल लेना कि नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये अल्लाह ताला को नापसंद है, सख्त नापसंद है। और अल्लाह का ये भी एक तरीका है कि अल्लाह ताला दुनिया में भी सजा दे देता है बाज दफा। ऐसा है कि आखरत में तो जो सजा है वो तो है, मगर अल्लाह ताला बाज दफा दुनिया में भी सजा देता है। और यहाँ पे लकद तहकीक के लिए आया, यानी जैसे हम कहते हैं ना खुदा की कसम, यानी तुम यकीनन तुम अच्छी तरह, तुम्हें पता है कि ऐसा हुआ यार, ऐसा हुआ था। अब इनके लिए देखें एक बात इसके अंदर क्या है, इनके लिए आजमाइश आई तो उस तरफ से आई जो इनको चीज पसंद थी। ये ललचाई भी नजरों से देखते थे कि हाय हम मछलियां इतनी आती हैं और हम पकड़ नहीं सकते। अब अल्लाह ताला ने इसी चीज को इनके लिए आजमाइश बनाया था, यानी उसी दिन अल्लाह ने इतनी मछलियां भेजी। हो सकता था कि पूरे हफ्ते में होती, लेकिन अल्लाह ने उसी दिन भेजी। और यहां पे पता चलता है किसी का तकवा, कि किसी के अंदर अगर तकवा होता है ना, अल्लाह की नाराजगी का डर होता है, तो वही बाज आ सकता है। वरना बाज दफा जिंदगी में मछलियां हमारे सामने भी उछलती कूदती हैं जी। वैसे क्या मतलब है इस बात का, यानी हम कहीं काम कारोबार करने के लिए जाते हैं, वहां जहां पर कोई ऐसी अल्लाह ताला की तरफ से पाबंदी है, मसलन है शराब नहीं बेचनी, खिंजीर नहीं बेचना, हराम है कोई कारोबार, कोई और ऐसी चीज उसके अंदर है, लॉटरी है, कोई कोई भी ऐसी चीज है, कोई सूद का है जॉब, कोई ऐसा काम है, वो आपको कहते हैं आप यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते, वो कहते हैं आप हिजाब के साथ नहीं यहाँ पे आ सकते। अब उसके अंदर पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उस कारोबार को आप करते हैं कि हाय हम तो कोई कारोबार ही नहीं कर सकते, हम मुसलमान हैं ना, हम बैंकों से लोन ले सकते, ना हम ऐसे कर सकते, हम क्या करें, हमारे तो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड हो गया ये। अब वो मछलियां कूद रही हैं आपके लिए, वो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है, इतनी आसानी है उसके अंदर, और अब बड़ा ही फायदा है, प्रॉफिट बहुत है उसके अंदर, जबकि दूसरी तरफ हलाल में इतना प्रॉफिट नहीं है। उस दूसरी तरफ आप देखते हैं, अगर मैं हलाल कारोबार करता हूं, मैं ये सारी चीजें नहीं करता, तो उसमें तो इतनी पे ही नहीं है या उसके अंदर इतना मुनाफा नहीं है। मगर उस वक्त क्या याद रखना है कि जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए रखा है उसी के अंदर मेरे लिए खैर भी है और बरकत भी है। इसको पर ब्लाइंड ट्रस्ट होना चाहिए इस बात पे, और जिस चीज से मना किया है उसमें मेरे लिए शर ही है, और इसमें कोई शर छुपा ही हुआ है जो मुझे नहीं नजर आ रहा, लेकिन इसमें शर है। जैसे हम कुछ चीजों से डरते हैं ना, इसमें जर्म्स हैं, ये नहीं खाना। आपको क्या पता, अब हम अपने कई मुल्कों में जाते हैं तो हम कई चीजें नहीं खाते, हम पानी नहीं पीते बाहर का, हम कहते नहीं भाई पेट खराब हो जाएगा। अब आपने कोई लाजमी, आपको पता है कि ऐसा ही होना नहीं है, लेकिन हमें अगर शक भी होता है ना तो हम उस चीज से बचते हैं कि मुझे यहां से नुकसान ना पहुंचे। अल्लाह ताला जब किसी काम से मना फरमा देते हैं तो हमें यकीन होना चाहिए, शक भी नहीं, हमें यकीन होना चाहिए। हम उसको खाने को खाना से छोड़ देते हैं, चाहे वो कितना ही मजे का हो, सिर्फ शक की बुनियाद पर कि इससे मैं बीमार ना हो जाऊं। लेकिन जहां पे यकीन होना चाहिए वहां पे हमारा यकीन मुतसलसल होता है, हम कहते हैं कोई बात नहीं कर लेते हैं, बाद में तौबा कर लेंगे। क्या यकीन नहीं है हमें कि इसमें बुराई है, इसमें शर है, इसमें सजा है? ठीक है, तो एक तो ये बात कि मछलियां बहुत आएंगी, सिर्फ काम कारोबार में ही नहीं, बहुत चीजों में ओपन अपॉर्चुनिटीज होती हैं, लेकिन वो काम हराम होता है, कोई नहीं जान सकता। आप हीले करके उसको कर भी लेते हैं, उसी को नहीं पता चलता, लेकिन अल्लाह को पता है। ठीक है, तो मछलियां आएंगी आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में भी ऐसे मौके आएंगे जहां पे हमें बहुत कुछ मजा आ सकता है, जहां पे हमें बहुत कुछ हासिल हो सकता है, जहां पे हमें बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, जहां पे हम रातों रात मालदार हो सकते हैं, बड़ा फन हो सकता है, या बड़ी और कोई कोई और मजे की चीज है, हमें वो अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और वो रास्तों में बिखरी होंगी। लेकिन हमें क्या चीज है जो हमें रोकने वाली होनी चाहिए? अल्लाह का डर कि नहीं ये काम नहीं करना। ठीक है, एक तो बात ये समझ आई। दूसरी क्या बात समझ आती है कि तावीले ना करो, अल्लाह के हुक्मों में तावील करना अल्लाह को सख्त नापसंद है। कि यानी बात जो अल्लाह ने हराम की है उसके अंदर ऐसे एक्सक्यूजेस, ऐसे लूप होल्स निकाल लेना और फिर उसको कहना कि नहीं ये तो हमने ऐसे थोड़ी किया। अब मिसाल के तौर पे कोई कहता है, आजकल कहते हैं ऐसे लोग, कोई कहता है जी शराब इतनी पी सकते हैं जिससे नशा ना हो, जब नशा होने लगे तो फिर नहीं है, फिर नाजायज है, तो बस इतनी तो पी सकते हैं, नशा हराम है तो हमने इतनी पी है। अस्तग़फिरुल्लाह, यानी कैसे एक चीज को जो हराम है, सरीहन हराम है, उसको कैसे हलाल बना ली कि बस हम तो इतनी ही पी रहे हैं। कैसे आपने को पता है यहूदियों की ये आदत ही है कि तावीलें करना। जब इनकी औरतों को कहा गया कवर करो, अपने बाल कवर करो, तो उन्होंने क्या किया, बाल ही शेव करा लिए। अब बाल ही नहीं है, कवर किसको करें, अब कवर ने करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो ना किस तरह से हीले बहाने करते हैं, हीला करके आज सूद को हलाल कर लिया गया, और फिर नाफरमानी करने के लिए आसानी पता है कैसे हो जाती है, गुनाह करना पता है कैसे आसान हो जाता है, जब आप तावील कर लेते हैं। फिर तावील करने से अपना मन भी सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि वरना तो अंदर से कचोके लगते रहेंगे ना, जमीर कहेगा तो तुम गलत कर रहे हो, गलत कर रही हो। लेकिन जब इंसान तावीलें कर लेता है ना, मैं तो ऐसे, जैसे उन्होंने कहा मैं हम हफ्ते को थोड़ी पकड़े, हम तो इतवार को पकड़े, अपने आप को भी सेटिस्फाई किया और दूसरों को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करते, हमें तो फलां आलिम है उन्होंने ये फतवा दे दिया, हालांकि अपना दिल कह रहा है कि ये गलत है, हमें तो फलां है उन्होंने बस ये बता दिया, नहीं फलां तो ऐसे कहते हैं, नहीं नहीं हमारा तो ये मकसद थोड़ी है, हम तो ये करते हैं, नहीं नहीं हमें तो फलाने ने इजाजत दी है, नहीं नहीं हमारे पास तो फलां मजबूरी है और मजबूरी के तहत तो सही है ना ये काम। यानी इतनी तावीलें हैं जो हम, कोई ये कह के नहीं करता कि ये गलत काम है और मैं कर रहा हूं, बहुत ही कम कोई ऐसा होता है, ज्यादातर लोगों ने तावीलें बना ली हैं। आज म्यूजिक के ऊपर आप बात कर लें, कितनी तावीलें हैं लोगों के पास, नहीं वो तो ऐसा, नहीं वो तो ऐसा। दाऊद अलैहिस्सलाम के भी तो मजामीर थे, दाऊद अलैहिस्सलाम नाउजु बिल्ला अस्तग़फिरुल्लाह, उनके ऊपर इतनी बड़ी तोहमत, कोई खुदा का खौफ भी नहीं करते, दाऊद अलैहिस्सलाम ये म्यूजिक सुनते थे, कोई खुदा का खौफ नहीं है इनके अंदर।
ये कहां से तावीले ले आते हैं? एक पैगंबर को भी नहीं छोड़ा, अपने ही चीज को जायज करने के लिए किधर तक चले गए? अस्तगफिरुल्लाह, कहां वो जबूर पढ़ने वाले, कहां उनके वो जबूर के तराने? तुम भी कुरान को खूबसूरत आवाज से पढ़ो। पर उन्होंने कहां से कहां मैच कर दिया। नहीं, कहां लिखा हुआ हराम है? हराम तो कोई है ही नहीं, हराम लिखा हुआ दिखाओ पहले। अस्तगफिरुल्लाह। तो जब बात नहीं माननी होती ना, तो फिर लोग तावीलें करते हैं, फिर हम लूप होल्स निकालते हैं, फिर हम इस तरह से तरह तरह के हीले, बहाने, तावीलें, जस्टिफिकेशंस देते हैं। अरे वो तो हिजाब तो उस जमाने के लिए था ना, वो तो मुनाफिकीन उस जमाने में रहते थे ना, तो इसलिए हिजाब कहा गया। आज तो सारे मुत्तकी परहेजगार हैं, आज तो कोई मुनाफिक है ही नहीं, तो लिहाजा आज किस हिजाब की जरूरत है? किसी ने कहा उस जमाने में गर्मी बहुत होती थी, तो इसलिए कहा गया ताकि अपने सर को कवर कर लें क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ, तो गर्मी लग जाती इसलिए। तो उसको फिर इसका मतलब इस्लाम तो सिर्फ अरब के लिए था, बाकी पूरी दुनिया के लिए तो नहीं, और रहती दुनिया के लिए भी नहीं है फिर, ये कहने का मकसद है। क्योंकि रहती दुनिया के लिए तो ये अहकाम की जरूरत ही नहीं थी, वो तो अपने खुद ही बना सकते थे। तो ये तावीलें अल्लाह को पसंद नहीं है, इसलिए कि जो तावील करने वाला इंसान है ना, वो कम ही होता है कि वो फिर अपनी इसलाह करे। क्योंकि तो वो कहता है मैं तो सही हूं ना, ये देखो उसके पास एक एक्सक्यूज है। जो इंसान कहता है ना ये बुरा काम है मेरे से हो जाता है, वो फिर भी अपनी इसलाह करने के लिए, उसके लिए चांस है। जिसने तावील दे दी वो फिर इसलाह नहीं किया करता। और फिर तीसरी बात ये, ऐसे लोग अल्लाह के हुक्मों का मजाक करते हैं, वो के अंदर लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, अंदर ऐसी ऐसी हुज्जतें निकालते हैं, वो अल्लाह के हुक्मों को मजाक बनाते हैं। चौथी बात हमें क्या नजर आई यहां पे, अल्लाह ताला ने सूरह आराफ में फरमाया कि अल्लाह ने उनको बचा लिया जो नसीहत करते थे, उनको बचा ली। ये नहीं फरमाया कि एक को जो करने वाले थे उनको बंदर बना दिया, बाकी सबको बचा लिया, तीसरे ग्रोह की कोई बात नहीं आई। सिर्फ ये फरमाया उनको बचा लिया जो नसीहत किया करते थे। इसका मतलब तीसरे ग्रोह का क्या हुआ, वल्लाहु आलम, उनके साथ क्या मामला हुआ? यानी जो कहते थे ना कि तुम क्यों नसीहत करते हो, क्या जरूरत है हमें, हम क्यों बुरे बने? आप देखिए बाज दफा हमारे सामने गलत काम हो रहे होते हैं, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं खामोश रहो, और तुम्हें क्या जरूरत है किसी की उसमें टांग अड़ाने की, है ना? हम अपने सामने बुराई देख रहे होते हैं, हमें को पता है कि ये नमाज नहीं पढ़ता, हम नहीं नसीहत करते, हमने पता है कि ये देखो ये फलां गलत काम कर रहा है, हमारे सामने कर रहा होता है, फिर हम कहते हैं हमें क्या? आपस में कोई बातचीत बंद किए हुए बैठे हुए, हम कहते हैं हमें क्या? दोनों से हम मिलते रहेंगे लेकिन उनको कभी नसीहत नहीं करेंगे कि नहीं तुम सुलह कर लो। आज भी आप देखें फैमिलीज के अंदर हमारे, बाज दफा हम ऐसे मकाम पे होते हैं, यानी हमारा वो दर्जा होता है, हम बड़े होते हैं उस फैमिली के, लेकिन हम कहते हैं हम क्यों बुरे बने? आज को तो हर एक को ये फिक्र है ना कि हम बस अच्छे रहें। जैसे मैंने आपको बताया सुलह कराने में कोई कोशिश नहीं करेगा, अपना अपना सब उल्लू सीधा रखेंगे, उधर भी जाके मिलेंगे उधर भी जाके मिलेंगे, लेकिन कहेंगे किसी को कुछ नहीं। हम कहते कहां पे और कब कहते हैं, जब खूब उनके साथ हंस खेल लेते हैं ना, फिर घर आके बोलते हैं देखा था उसको फलानी ने, देखा था क्या पहना हुआ था फलाना, देखा उन्होंने अपनी शादी पे क्या किया था फलाने, देखी क्या कर रहे थे, तब हम बोलते हैं। उसको नहीं सिर्फ कहते, बाकी सबको कहते हैं। या जब हम खूब फेसबुक पे लोगों की फोटोज देख लेते हैं, बड़े शौक से देखते हैं एक एक तस्वीर को टाइम लगा के, उसके बाद फिर हर तरफ कहते फिरते हैं देखा था जरा उसको फलानी को, मैंने देखा फेसबुक पे ये कर रहे थे, फिर हर तरफ कहते हैं बताते हैं, तो हमने क्या किया? ये इसलाह है? या तो देखें ही ना या फिर उनसे कहें, यही तो अमर बिल मारूफ व नहीं है मुनकर है, जो इस उम्मत के ऊपर फर्ज है, लाजिम है। लेकिन देखें बचाया अल्लाह ने किनको, जो मना करते थे, जो कहते थे, हमारे पास अथॉरिटी होती है कहने की, फिर भी हम कहते हैं कि नहीं,
क्यों मैं कहूं, मुझे क्या लगे। भाई आपकी जितनी भी आपकी पावर है उतने तो कहें, अपने सामने देखते हैं और बस बोलते नहीं है। बोलेंगे तो माइंड ना कर ले, माइंड कर ले चाहे, लेकिन वहां पे माइंड ना करे लेकिन चाहे जहन्नुम में जले वो हमें कबूल है। बाज दफा हमारे अपने बच्चे होते हैं, बाज दफा पोते पोतियां नवासे नवासियां होते हैं, नहीं कहते क्यों कहें हम। فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, تو ہم نے بنا دیا اس کو عبرت آگے والوں کے لیے بھی, یعنی جو موجود ہیں ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے بھی. خلف یعنی پیچھے, یعنی بعد میں آنے والے. سوچیں جنہوں نے دیکھا ہوگا اپنے سامنے اپنے رشتہ داروں کو بندر بنا ہوا اور روتے ہوئے ان کو دیکھا ہوگا, ان کے اوپر کیا گزری ہوگی, کتنا بڑا ان کے لیے سبق ہوگا, کتنے وہ ڈر گئے ہوں گے. اور وہ انہوں نے پھر آگے آگے اپنی نسلوں کو یہ واقعہ سنایا. اور موعظۃ للمتقین واعظ ہے متقین کے لیے, کسی کے لیے تو عبرت کا سامان ہے. اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے دلوں کو نرم کرنے والی یہ بات ہے کہ وہ بھی ڈر جائیں کہ یہ کام کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ تاویلیں کریں ہم. بات مچھلیاں پکڑنے کی نہیں ہے, بات ہے اللہ کے حکم کو ڈسٹورٹ کرنے کی. یہ بات ہے کیسے یہ ڈسٹورٹ کرتے ہیں, کیسے اس کو تروڑتے مروڑتے ہیں اور اپنے مطلب کا بناتے ہیں, اس کی بات ہے. تو اب مچھلیاں ہوں نہ ہوں لیکن بہت سارے اللہ کے حکم آئیں گے جو ہمیں نہیں پسند ہوتے, جو ہمیں ہوتا ہے کہ اس سے کیسے ہم کسی طرح نکلیں, پھر ہم اس کے اندر سے کیسے چیزیں نکالتے ہیں نا, پوائنٹس دیکھیں ذرا ہم کس طرح نکالتے ہیں کہ سارا اپنا دماغ اس پہ لگاتے ہیں کہاں سے نکالیں پوائنٹ, کیونکہ مرضی کیا ہوتی, کرنا نہیں ہے. جب کرنا مشکل لگتا ہے نا تو پھر یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جنہوں نے تاویلیں کی, واقعی ہفتے والے دن تو کھڑے نہیں ہوئے تھے, فزیکلی تو نہیں کھڑے ہوئے تھے, اس کے اوپر بھی اتنی سزا ہے. اور جو کھلم کھلا کہیں کہ ہاں ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور ہم ایسا کر رہے ہیں اور ہم کریں گے, اور دھڑلے سے اس کے اوپر بے خوف ہو کے اور اللہ کو للکار کے کریں, ان کی پھر کتنی بڑی سزا ہوگی. اور نکال میں اور موعظہ میں فرق کیا ہے, نکال ہے ایسے کہ عبرت پکڑ لے کوئی انسان, اور موعظہ ایسے ہے جیسے نکال سمجھ لیں دوائی ہے اور موعظہ سمجھ لیں غذا ہے. دوا اور غذا میں فرق ہوتا ہے نا, دوا کس کے لیے ہوتی جو بیمار ہوتا ہے, اور غذا کس کے لیے ہوتی جو ٹھیک ہوتا ہے, لیکن غذا تو اس کو بھی چاہیے نا. ایمان والوں کے لیے غذا ہے موعظہ ہے, دل ان کے نرم ہو جائے, اور ان کے لیے تو بہت بڑی سخت بات ہے. تو اب آپ نے دیکھا پہلے واقعے سے کیا سمجھا, جب اللہ کا حکم آئے تو کیا کرنا ہے, تاویلیں نہیں ڈھونڈنی, ٹھیک ہے, حجتیں نہیں, اس کے بعد اس کو ڈسٹورٹ کر کے اپنے مطلب کا نہیں بنانے کی کوشش کرنا, اس کو ایز اٹ از کر لینا. اور کیا سمجھ آیا, کہ اللہ تعالی کے حکموں کے آگے ہمارا بیہیویئر کیسے ہونا چاہیے, جھکنے کا, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ایک آپ کو بات سمجھ آئی. اب دوسری بات کہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اور ان کا کیا بیہیویئر تھا, یہ ہم نیکسٹ آیا سے سمجھتے ہیں, نیکسٹ واقعے سے. تو یہ دونوں باتوں کو آپ نے سمجھ لیں, کیونکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھیں گے قرآن میں, اللہ تعالیٰ کے حکم آئیں گے. ابھی تو نہیں آ رہے کوئی, ابھی تو آپ نے کچھ نہیں ایسا پڑھا, لیکن آئیں گے آگے آگے احکامات. پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے, یہ بیہیویئر کرنا ہے جو 65 آیت میں آیا, یا یہ بیہیویئر کرنا ہے جو آگے ہم پڑھنے والے ہیں, یا وہ بیہیویئر رکھنا جو صحابہ کا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیں, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً, جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تم کو کہ تم ذبح کرو بقرہ کو. یہ کب آیا حکم, کیوں آیا, کیا وجہ تھی اس کی؟ آپ کو پتہ ہے ایک عجیب بات آپ سنیں کہ کیا ریزن تھا اس کا, یہ کہاں بتایا گیا, پورا جب بات ختم ہو گئی آیت نمبر 72 میں بتایا گیا. अच्छा होना क्या चाहिए था हमारे सीक्वेंस के लिहाज से, तो पहले ये बताया जाना चाहिए कि क्यों उन्होंने कहा, फिर उसके बाद ये बात आती, पहले वाक्य आता जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, और फिर ये आता कि उन्होंने उनको इस वाक्य के लिए हल ये बताया। लेकिन ऐसा क्यों है कि पहले ये बात आ गई और बाद में वो आया, इसकी बड़ी हिकमतें हैं और वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको वाकया बता दूं, वाकया ये है कि बनी इसराइल में एक आदमी तो बहुत अमीर था, बाज जगह पे आता है कि उसकी एक ही बेटी थी, बाज जगह पे आता है उसकी कोई औलाद नहीं थी, बेसिकली उसका कोई बेटा नहीं था जो आगे इनहेरिट करे उसकी जो विरासत, उसका सिर्फ एक भतीजा था और सारी विरासत इस भतीजे को ही मिलनी थी। आदमी बहुत कंजूस था, खर्च नहीं करता था किसी के ऊपर भी। अब भतीजे को जाहिर है हम ऐसे ही नहीं कहा गया कि रिश्तेदारों पे खर्च करो, जब रिश्तेदारों पे खर्च नहीं किया जाता ना तो फिर उनके दिल में हसद भी पैदा होता है, दुश्मनियां भी पैदा होती हैं, फिर वो कहते हैं ये क्यों खा रहे हैं और हम क्यों बैठे हैं। तो अब ये भतीजे ने जब देखा कि चचा तो इतना अमीर है और ये सारा कुछ मुझे मिल सकता है अगर ये मर जाए, तो उसने एक प्लान किया। ने कहा हम क्यों इस तरह, मैं क्यों ऐसे बैठा हूं, क्यों ना इसको कत्ल ही कर दूं ताकि जल्दी मुझे मिल जाए, इंतजार भी करने की क्या जरूरत। तो लिहाजा उसने अपने चचा को कत्ल कर दिया और कत्ल करके किसी और के दरवाजे पे फेंक आया। आपको पता है इनमें 12 कबीले थे ना बनी इसराइल में, जब हमने 12 चश्मों की बात पढ़ी है पहले, तो एनी हाउ किसी के दरवाजे पे फेंक आया, सुबह को उठ के शोर मचा दिया, मेरा तो चचा ही नहीं मिल रहा। अब जब देखा गया, तलाश किया गया, तो वो जिसके दरवाजे पर पड़ा हुआ था उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया। अब ये एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया, क्योंकि ये तो गर्मा गर्मी वो कहते हमने तो नहीं कत्ल किया, ये कहने लगा नहीं कत्ल किया और अब मुझे इसका खून बहा भी दिया जाए, यानी एक तो मैं इसकी जायदाद लूं और उसके बाद इनसे भी माल लूं। आपको पता है आप विरासत में इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे कि जो किसी का कातिल होता है ना, यानी एक आदमी ने अगर किसी को कत्ल किया, जैसे इसने भतीजे ने चचा को कत्ल किया, तो वो अपने चचा का कभी वारिस नहीं बन सकता, कातिल अपने मकतूल का वारिस नहीं बनेगा। तो इसको तो कुछ मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो और ज्यादा लेने के चक्कर में था। अब ऐसे में उन्होंने कहा, इतना बड़ा एक फसाद खड़े लगा, क्योंकि आपको पता है कबायली जिंदगी के अंदर ये बड़ी इजी होता है, कत्ल तो बड़ी बहुत बड़ी बात है, तो छोटी छोटी चीजों के ऊपर लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं और जंगे हो जाती हैं और कत्लोगारत होता है। तो ये बड़ी जंग एक शुरू होने लगी थी, दोनों तरफ से तुल गए थे जंग के लिए, कि वो कह रहे थे हमने नहीं कत्ल किया, ये वाले कह रहे थे कि भाई तुमने किया, हमारे बंदे को मार दिया। जिस सोसाइटी के अंदर ना, एक मुसलमान के ऊपर तो मुसलमान का, और ये मुसलमान ही सोसाइटी है ठीक है, ये उस वक्त के मुसलमान है ये, अब हम तो नहीं आए थे ना इस्लाम, ये वाली जो हमारा दीन है ये तो नहीं आया था, यहूदियत ही उस वक्त इस्लाम थी, जो मूसा अलैहि सलाम मजहब लेकर आए थे वो इस्लाम ही था। तो वो जो मुसलमान है, मुसलमान के ऊपर तो हराम है दूसरे मुसलमान का जान माल इज्जत, लेकिन जिस सोसाइटी में एक मुसलमान ही मुसलमान का खून करने लगे ना, तो समझ ले उस सोसाइटी का जवाल शुरू हो गया, क्योंकि फिर किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वो आपस के अंदर ही लड़ लड़ के खत्म हो जाते हैं। तो ये एक पॉइंट है कि इसी वजह से कत्ल के ऊपर किसास रखा गया कि कत्ल आम ना हो जाए, कि लोग जिसको मर्जी मारते फिरे। अब क्या हुआ कि इससे पहले कि बड़ा कोई जंग शुरू होती, उन्होंने कहा हमारे अंदर जब पैगंबर मौजूद हैं तो चलो जाके उनसे पूछते हैं कि अब इसका क्या हल करें। अब वो पैगंबर के पास आए हैं, अब यहां से ये बात शुरू हो रही है कि जब उन्होंने आके ये सारा किस्सा बताया, तो मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, वो इज, मैंने आपको क्या बताया इज किस लिए होता है, याद करो वो टाइम जब ऐसा हुआ था, इज हमेशा पास्ट के लिए होता है ठीक है, ये लिख लें, इज जब भी आएगा वो पास्ट के लिए होगा, माजी के लिए, इजा जब आएगा ना तो वो फ्यूचर के लिए होगा। तो इज जब कहा मूसा, कौला कहा मूसा अलैहि सलाम ने अपनी कौम से, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम एक गाय को जिबा करो। अब ये वो क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, जानते हैं क्यों कह रहे हैं, वो खुद भी कह सकते थे इज बाहू बकरा, बकरा को जिबा करो, वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि ये कौम मेरी नहीं बात सुनेगी, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह ताला ने इस चीज का ये बताया है, इसका सलूशन कि तुम बकरा को जिबा करो। ठीक है, अब क्या हुआ, उन्होंने आगे से क्या कहा, कालू अतत्तखिदुना हुजुआ, अतत्तखिदुना तुम बना रहे हो हमको मजाक, तुमने हमें मजाक समझा हुआ, यू आर मेकिंग अ जोक आउट ऑफ अस, क्या कह रहे हो। यानी अच्छा, अगर एक आम आदमी ये बात कहता तो फिर तो समझ आती है ये जवाब, या आम आदमी कहे आपसे पूछने के लिए गए हैं कि मेरे इस मसले का हल क्या, तो वो कहे जाके गाय ज़िबा करो, तो आप कह सकते हैं भाई मैं मसले का हल पूछने आया हूं, तुम कह रहे हो गाय ज़िबा करो, ये कैसी बात। लेकिन आम आदमी ऐसा कहे तो ये जवाब बनता है, लेकिन जब अल्लाह का रसूल ऐसी बात कह रहा हो तो फिर उम्मत को समझना चाहिए और ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि ये जो बात कह रहे हैं और ये फरमा रहे हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, तो फिर हम बगैर चूं चरा के ये बात को मान लें, और हम ये ना कहें ये क्या मजाक है आपने बनाया हुआ, आपने हमें मजाक समझा हुआ। ये वो किसको कह रहे हैं, सबसे पहली क्या बात पता चलती है, लैक ऑफ अदब, अदब नहीं है। और साहबा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अदब सबसे पहले सिखाते थे, अगर अदब नहीं है ना तो फिर आप कुछ भी इल्म भी ले लें कोई फायदा नहीं है। याद रखें एक बात, आगे भी जाके ये बात के ऊपर हम करेंगे, बनी इसराइल में इल्म की कमी नहीं थी। जी हाँ, इल्म की कमी नहीं, अगर आप समझते ना कि इन लोगों के पास इल्म नहीं था, वो बेचारे उनको क्या पता, नहीं इल्म तो बहुत था इनके पास, इल्म की कमी नहीं थी। फिर प्रॉब्लम क्या था, वो आगे बात समझ आएगी आपको इनकी हरकतों से, ये प्रॉब्लम क्या थे। तो इनको ये ना समझे कि अनपढ़ थे बेचारे, ना समझ थे, उनको पता ही नहीं था, नहीं। तो यहां पे क्या पता चला, अदब नहीं था, एक पैगंबर के साथ जैसे बात करनी है, या एक पैगंबर के हुक्म को जैसे समझना है, और वो पैगंबर भी ये नहीं कह रहे कि मैं कह रहा हूं, अव्वल तो अगर वो ये भी कहें तो फिर भी मानना है, वो खुद कह रहे हैं अल्लाह ने फरमाया है, कह रहे हैं हमारे साथ क्या मजाक कर रहे हैं। यानी इनको पैगंबर के ना मकाम और रुतबे का कोई एहसास है, ना उनकी कोई बात का उनको कोई पास है कि ये क्या हमें हुक्म दे रहे हैं, क्या समझ आई यहां से। हम साथ साथ लेकर चलते हैं ना, ताकि हर बात से हमें सबक समझ आए। क्या बात समझ आई, पैगंबर के हुक्म के आगे अगर उनका हुक्म नहीं भी समझ आ रहा, वो कह रहे हैं बकरा को जिबा करो, नहीं तुम्हें समझ आ रहा, लेकिन ये काम नहीं होता कि आगे उनके ये कहें ये क्या बात हुई है। आज तो नहीं हम ऐसे करते, पैगंबर अपनी जात में तो मौजूद नहीं, लेकिन उनके फरामीन तो सब मौजूद हैं, एज इट इज मौजूद हैं, अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई है और अहादीस हमारे तक प्रिजर्व्ड फॉर्म में पहुंची हैं, हमें पता है कि कौन सी सही हदीस है, हमें पता है कि हदीस की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी ऑथेंटिक है ये, हमें पता है ऑथेंटिक अहादीस का, ज़ईफ हदीस की नहीं बात कर रहे, ऑथेंटिक अहादीस। फिर आगे से बातें क्या होती हैं, लो ये क्या बात हुई, लो ये तो औरत की आधी गवाही, ये क्या बात हुई, फिर ये क्या बात हुई कि फिर ये हमें इस तरह का हुक्म दिया जा रहा। मिसाल के तौर तो मैं एक आपके सामने मिसाल रखू, एक मिसाल रखू कि बहुत सारे लोग तिलमिला ना जाए लेकिन रखती हूँ, लेट्स सी आपका क्या रिएक्शन होता है, मैं उनके बात उनकी बात को तो बड़ी जल्दी कह रहे हैं ना, लेट्स सी आपका क्या रिएक्शन होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को कहा भाई जाओ आप जाके, उनको कोई बीमारी हो गई थी, ऊंट का पेशाब पियो, आपको कोई पीने को नहीं कह रहा, लेकिन उसके बाद क्या, ईयू आओ, किसके ऊपर कर रहे हैं, हदीसे रसूल है, वाजे है, बुखारी में है, और इसके बाद हमारे क्या एटीट्यूड्स हैं, हम क्या रिएक्शन शो करते हैं, हम क्या आगे से कहते हैं। और एक नहीं है, आप खाने के बाद उंगलियां चाटने की बात को देख ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, क्या करते हैं हम, आप देख लें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हुलिया दे, आपके सामने कोई दाढ़ी वाला आ जाए, उसके टखने भी नंगे हैं, उसने अपनी पैंट्स इतनी ऊंची करी हुई है कि टखने नंगे हो रहे हैं, तो आपको क्या याद आता है, अस्तग़फिरुल्लाह, और हंसी छूट जाती है, या फिर नागवारी सी चेहरे पे हो जाती है, हाय हाय इसको तो पता ही नहीं है कि दुनिया में रहना कैसे है, बिल्कुल ही बैकवर्ड, जाहिल, गंवार। बड़ी हैरत होती है हमें बनी इसराइल के रवैयों पर, लेकिन वही रवैये हमारे भी हैं, माजरत के साथ। और भी कई चीजें बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि कितनी सारी बातों के ऊपर जो हमारे नबी ने कही, दम तो बहुत भरते हैं मोहब्बत का, 12 रबीउल अव्वल आ जाए तो बस गिरते पड़ते उठते हैं, कैसे बस क्या कर जाए हम। लेकिन हाल ये है कि उनके फरामीन के आगे हमारा भी यही हाल होता है। नो वे, आई कैन नॉट डू दैट, नो वे, ये किस चीज को कह रहे होते हैं? तो हदीस तो छोड़े, कुरान की बातों को कह रहे थे, नो वे, हम तो नहीं कर सकते। किसको जवाब दे रहे हैं? ये भी तो अपने पैगंबर को ही कह रहे हैं। उन्होंने आगे क्या फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मर्जी से कोई बातें कही हैं? फरमाया नीचे कोई गिर जाए तुम्हारी रोटी, कोई खुश्क चीज गिर जाए तो उसको झाड़ के तो खा लो, आप बेशक ना खाएं लेकिन इस चीज को बुरा ना समझे। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप किसी बीमारी के लिए, आपको पता है आज मिस्र के अंदर एक जगह है, वहां पे उन्होंने बनाया बाकायदा एक, वो बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए लोग वहां पे इलाज के लिए आते हैं और यही ऊंट का पेशाब पीते हैं। तो अब ठीक हो गया या और वो जो अब वो कैप्सूल में बना के दे दें, किसी शरबत में डाल दें, कोई किसी कैंसर का इलाज इसके अंदर निकल आए तो फिर देखना भागेंगे पीने को। लेकिन जब नबी की हदीस है ना तो उसको बुरा जानेंगे। कोई पीने को नहीं कह रहा लेकिन कम से कम हदीस को ना बुरा समझो। आपको कहा गया भाई पानी के अंदर कोई चीज गिर जाए, इस तरह कोई मक्खी है तो उसको फिर डुबो के दूसरा पार और फिर पी सकते हो आप। आपने नहीं पीना ना पियो, मगर उसके ऊपर ई ऊ ना करो, उसके ऊपर नाक मुंह ना चढ़ाओ, क्योंकि आप नाक मुंह किसके ऊपर चढ़ा रहे हैं? नबी की बात पे। ये चीज है बुरी। आप लौंडियों के ले आए, कोई लौंडियों का जरा निकाल के तो देखें उसके बाद हमारे लोगों के हाल क्या होते हैं। आप चार शादियों के ऊपर बात कर लें तो यानी कितने सारे में एक नहीं है, बेशुमार दीन की ऐसी चीजें हैं, हमारी अपनी क्लोजेट्स में स्केलेटन्स हैं, ऐसी चीजें हैं कि हम अगर आप सोचें तो कितनी जगहों पर हम खुद एतराज करने वाले होते हैं, क्योंकि बस हमारे आज के जमाने के नॉर्म्स के मुताबिक वो नहीं है। हाँ कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो वो ठीक है, लेकिन ऐसे ये नहीं होना चाहिए, ये चीज नहीं हम, क्योंकि वो आज के नॉर्म का नहीं है, इसलिए हम उसके ऊपर एतराज करने लगते हैं। उनको भी तो कोई बात नहीं समझ आई थी इसलिए उन्होंने एतराज किया, उनकी बात हमें अजीब लगती है और हम जो बेशुमार बातें ऐसी करते हैं, जब हमारे नबी फरमा रहे हैं, अल्लाह ने ये हुक्म दिया या वो खुद फरमा रहे हैं कोई बात, वो भी अल्लाह की तरफ से आई है, हमारा ये ईमान है, ये अपनी ख्वाहिश से नहीं कुछ कहते थे, फिर भी उसके आगे हम बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो उनका जो खास उनका रिप्लाई अल्लाह ताला ने, जो उन्होंने जवाब दिया ना अपने नबी को, वो यहां पे कोट किया। कुरान का कोई चीज बेकार नहीं है, कोई चीज बेकार नहीं है, कोई एक लफ्ज भी इसमें फालतू नहीं है। उनका इतना अजीब जवाब था, बुरा जवाब था, अल्लाह ताला ने उसको भी कोट किया यहां पे। ये वो उन्होंने ये जवाब दिया मूसा अलैहि सलाम को, यानी उन्होंने अपने नबी की इतनी भी ना इज्जत रखी, उन्हें ये नहीं सोचा वो किसको कह रहे हैं। क्या रसूल अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाएगा कि वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? जैसे आज बाज मुसलमानों ने भी ये किया हुआ ना, दीन को हंसने हंसाने की चीज बना लिया। रसूलों का ये काम नहीं होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने लतीफे सुना सुना के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाते थे? कभी आपने सुना कि उनको जोक सुनाए हो और फिर उसके बाद उनको हंसाया हो और उसके बाद उनको बताया हो? लेकिन आज हमारा मिजाज कैसा बन गया इस उम्मत का कि वो कहते हैं ये तो बहुत सीरियस बातें करते हैं, और ये तो बहुत डराने वाली बातें करते हैं, चलो वहां चलते हैं जहां पे लतीफे हों, जोक्स हों, मजा आए, वो कोई कॉमेडी प्रोग्राम है। ये दीन को कॉमेडी बना लिया, या तो खाना पीना हो या फिर कॉमेडी हो, वहां पे कोई कोई उछल उछल के आपको बता रहा हो या कोई हंसा रहा हो, तो वहां पे जाके हमने दीन भी वहां से लेना है। ये हमारा देखो जौक भी क्या हो गया। और जहां पे कोई सीरियस बात हो रही हो, नहीं, ये तो बड़ी डरा देने वाली बातें हैं, ये नहीं, या ये तो बड़ी सीरियस बातें हैं, उनमें दिल ही नहीं लगता, इनमें मजा नहीं आता, मजा वहां आता है। लेकिन अंबिया का ये काम नहीं होता था कि वो मजाक करें, कि मजाक और मजाक में भी फर्क होता है ना, एक होता है मॉक करना किसी को, वो कह रहे हैं आप हमारे साथ इस तरह मजाक कर रहे हैं। काल आऊज बिल्लाही नकूना मिनल जाहिलीन, उन्होंने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं मैं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। यानी जाहिल का मतलब यहाँ पे क्या है, जाहिल एक तो होता है ना आलिम के मुकाबले में कहते हैं जाहिल, ठीक है, एक आलिम है और एक जाहिल है, ये वो जाहिल नहीं है मुराद यहाँ पे। एक जाहिल वो भी होता है जो जज्बात को कंट्रोल ना कर सके, वो भी जाहिल होता है। लेकिन यहाँ पे जाहिल किसको कहा जा रहा है, यानी जो अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक करे, वो चाहे PhD क्यों ना हो। वो कह रहे हैं ना आप हमारे से मजाक करते हैं, उन्होंने कहा मैं मजाक करूंगा, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूं कि मैं तुमसे मजाक करूं ऐसी बातों पर, कि जो अल्लाह ने हुक्म दिया मैं उसको मजाक बना के, तुम ये कुछ पूछ रहे हो और मैं कह रहा हूं अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है तुम जाओ जाके गाय ज़िबा करो, ये कोई मजाक की बात है। तो इससे भी पता चलता है कि देखें, अगर एक पैगंबर के साथ लोग बहस कर रहे हैं और वो आगे से ये बात कह सकते हैं, तो हमसे भी कोई बहस करे ना, तो हम भी कोई इसके अंदर शर्म की बात नहीं कि हम कहें औजु बिल्लाह मिन शैतान रजीम, अल्लाह मुझे अपनी पनाह मिले शैतान मरदूद से। हम कहते हैं उस वक्त मैं क्यों औजु बिल्लाह कहूं, ये कहे ना औजु बिल्लाह, नहीं, ये पैगंबर हैं और वो भी अल्लाह की पनाह ले रहे हैं ये जाहिलाना बातों से। और दूसरे मैंने कहा ना, जाहिल वो भी होता है कि जो जज्बात को कंट्रोल ना कर पाए, तो वो कहते हैं ये नहीं कि मैं, यानी ये ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए तो अल्लाह ताला मुझे इससे भी अपनी पनाह में ले ले कि मैं आप कोई बात कह दूं तुम्हें, गुस्से यानी तुमने इतनी बुरी बात कही है, क्योंकि जब वो फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने हुक्म दिया है तो अल्लाह की बात को भी नहीं तुम समझ रहे, तुम जो जो कह रहे हो कि आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, तो तुम अल्लाह की बात को यानी ये कह रहे हो। अच्छा, अब जब मूसा अलैहि सलाम ने ये कहा, तो अब आगे देखें उनकी बात। अच्छा, एक और बात यहाँ पे हमें समझने की है, थोड़ी सी डीप बात है, लेकिन उसको थोड़ा अगर हम समझ लेना तो कई चीजें आसान हो जाएंगी। देखें, जब उन्होंने वो कहते हैं ना ये क्या बात हुई, हम गाय ज़िबा करने का कह रहे हैं, ये क्या हुआ, ये तो मजाक है, तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि देखें उनको नहीं समझ आई थी, ठीक है, अगर मान लिया जाए उनको नहीं समझ आई थी कि उसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप है, गाय ज़िबा करने का कातिल के पता करने से क्या रिलेशनशिप है। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो इतनी जंग होने लगी है और इतना बड़ा मसला पड़ गया और आप कह रहे हैं गाय ज़िबा करो, नहीं समझ आई थी ना उनको लॉजिक, तब उन्होंने आगे से ये कहा। इससे हमें पता चला कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हम उसमें लॉजिक तलाश ना करें, है ना, जो जैसे हम कहते हैं ना मुझे तो इसमें कोई लॉजिक नहीं नजर आती, ये क्या बात हुई, ये कुरान का हुक्म ऐसे है क्यों इसके अंदर ऐसे, ये तो कोई सेंस मेक नहीं करता। तो देखें, ये हमें अब जरूरत नहीं है कि हम इसमें सेंस मेक करना, ये तलाश करें, लॉजिक तलाश करें, ये पता है किस वक्त काम होता है, ये पता है किसका काम है, जो अभी इस्लाम में दाखिल नहीं हुआ, ठीक है, जो इस्लाम से बाहर खड़ा हुआ है ना, उसको कहा गया तुम अच्छी तरह देखो, सोचो, समझो, फिर इसमें दाखिल हो, ठीक है ना, उसके पास चॉइस है, वो कह सकता है जी इसके अंदर मुझे सेंस नहीं मेक करता, ये नहीं है, ये इसमें मुझे लॉजिक बताएं, वो इस तरह का सवाल कर सकता है। लेकिन वंस आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए ना दाखिल, आपने कह दिया ना ला इलाहा इल्लल्लाह और आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मान लिया ना, उसके बाद आपका दरवाजा बंद हो जाता है इस किस्म के सवालात करने का, या ऐसी बातें करने का, या ये कहने का मुझे बताएं इसके अंदर क्या लॉजिक है, इसमें क्या सेंस है, ये मुझे बताएं। ये नहीं कि आप सवाल नहीं कर सकते, आप सवाल कर सकते हैं, मगर सवाल कैसे होना चाहिए, सवाल ये होना चाहिए कि ये कैसे होगा ये मुझे समझा दें, ये किस तरह से इसके ऊपर अमल करना ये समझा दें, ये नहीं कि आपका सारा फोकस
फोकस किसके ऊपर है, मुझे इसके अंदर से कोई बताए ना इसका फायदा क्या है, क्यों ये हुक्म दिया गया है, क्यों ऐसे कहा गया, मुझे तो नहीं वैसे ये बात, ये क्या बात हुई फिर, ये क्यों है, ये कैसे हो सकता है, ये फिर अब आपने अपना राइट गिव अप कर दिया है जब आप इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए ना, क्योंकि आपने अल्लाह को क्या मान लिया, आपने अल्लाह को अलीम माना है, खबीर माना है, आपने इलाह मान लिया, आपने अल हकीम मान लिया, जितनी अल्लाह की सिफात है आपने मान ली है ना, जब आपने अल्लाह को रब माना, खुदा माना, तो वो हस्ती माना, उसकी सारी सिफात को मान लिया, तो अब जब आपने कह दिया कि मसलन एक सिफत सिर्फ ले लें, अल्लाह अल हकीम है, आपने मान लिया ना, जब आपने अल्लाह को एक मान, अब आप कैसे कह सकते हैं इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं, इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, जब आपने मान लिया कि उस अल हकीम ने ये हुक्म दिया है, तो फिर अब आप नहीं कह सकते इसमें कोई लॉजिक नहीं है, या इसमें क्या बात इसमें तो कोई बात ही नहीं समझ आती, ये तो कुछ है, फिर तो बस आप कहें कि जो अल्लाह ने कह दिया वो जो अल हकीम है उसने हुक्म दिया है ना, तो मुझे मानना, फिर आप कहें वो अल अलीम है उसने हुक्म दिया मुझे मानना, फिर आप कहें वो मेरा इलाह है, वो मेरा रब है, मैंने उसको मानना है, उसका हुक्म है, मैंने करना है ये, फिर आप ये नहीं, फिर ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं हो सकते, उस तरह के क्वेश्चन उसके हो सकते हैं जो मुसलमान नहीं है, आप तो सब कुछ समझ के, सब कुछ एज्यूम किया जाता है कि आप सब समझ के ही मुसलमान हुए हैं, जब नहीं हुए थे तो ला इकराह फिद दीन, फिर दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, आपने आना है आए इस दुनिया में, नहीं आपको समझ आती ना आए आप, लेकिन आप जब आ गए हैं फिर ये क्वेश्चन करने का क्या तुक बनता है कि अब हम हमारा ना आज मिजाज पता है क्या हो गया, हम इस दीन को री एग्जामिन कर रहे हैं आज, अपनी अकल से री एग्जामिन करने की कोशिशें कर रहे हैं आज, जो कि हमारे लिए नहीं बनता सवाल, हम मुसलमान हैं, हम ऑलरेडी मान चुके हैं, अब फिर जाके वापस पलट के पॉइंट जीरो पे चले जाना, ये तो नहीं हो सकता, आइदर अल्लाह माफ करे, अल्लाह हम सबको महफूज रहे, आइदर तो ये कोई कहे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, अब मैं दोबारा रीवैल्यूएट करूंगा इस दीन को, फिर मैं इसमें दाखिल होगा, वो तो एक समझ आई, लेकिन एक कहता है कि मैं मुसलमान भी हूं, साथ वो ये भी ढूंढ रहा है कि भाई इसके अंदर क्या है, ये क्या भाई, फिर तो कहना चाहिए भाई इसके अंदर क्या लॉजिक है क्या लॉजिक नहीं, मुझे तो ये अमल करना है, लॉजिक समझ आए, जब आएगी पता नहीं आएगी भी कि नहीं आएगी, पूरी जिंदगी 10 साल में आए 20 साल में आए या आए ही नहीं, आई डोंट केयर, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, मेरे खुदा ने, वो भाई यहाँ पे तो लोग अस्तगफिरुल्लाह महबूब बनाते हैं औरतों को और उनके ऊपर शायरी करते हैं और कहते हैं तू मुझे जो भी कह सजदा कह मैं सजदा तुझे करूंगा, पूजना है तो पूजने की भी करते हैं कि मैं तुझे पूजता हूँ तू हुक्म दे तो मैं वो जब इंसानों के लोग ऐसे गुलाम बन जाते हैं, जब उनको खुदा बना लेते हैं, वो तो तुम्हारा खुदा है, तुम उसको क्वेश्चन कर रहे हो, अकल किधर चली गई तुम्हारी, मुसलमान की तो जुबान पे ये आ ही नहीं सकता, ये क्यों ये कैसे ये क्या, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये क्या बात हुई, इसमें लॉजिक बताएं, इट डजेंट मेक एनी सेंस, जैसे वो कह रहे हैं, कितनी बुरी लगी अल्लाह को उनकी बात ना, और रोजाना हमारे हम मुसलमानों में हम ये कहते हैं बातें, और अभी तो काफी चीजें नहीं हमें पता होती, तो वो तो वैसे ही जो जो पता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से क्यों शादी की उस वक्त, उनकी तो उम्र इतनी छोटी थी, ये तो हमारा कॉमन एतराज होता है, हम कौन है ये कहने वाले, जब हमने उनको रसूल मान लिया पता कितनी बड़ी, या तो हमें समझ ही नहीं है ना कि किसी को रसूल कहना क्या बात होती है, या हमें ये समझ ही नहीं है कि खुदा मानना किसी को कितनी बड़ी बात है, जब आपने किसी को खुदा मान लिया, डू यू इवन नो व्हाट दैट मीन्स, डू यू इवन नो, आपको कोई आइडिया है कि किसी को खुदा मानना क्या होता है, सबसे बड़ा मान लिया, उसके बाद हम कहते हैं हस्बैंड नहीं मानते क्या करें, अम्मी नहीं मानती क्या करें, वो अम्मी और हस्बैंड की क्या हैसियत है अल्लाह के सामने, आपने अल्लाह को खुदा बनाया, हस्बैंड तो हस्बैंड है सिर्फ, वो तो एक इंसान है, उसका आपसे ताल्लुक एक शौहर बीवी वाला ताल्लुक है, एक है खुदा आपका और आप उसके बंदे हैं, आप उसके गुलाम हैं, और फिर कंपेयर किधर कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म को रख रहे हैं हस्बैंड की मर्जी के आगे, पता नहीं क्या हो गया हमें कि हमें आज तक कलमा ही नहीं पता, हम और तो बाकी सब चीजें छोड़ते हैं, खुदा के लिए सिर्फ कलमे को समझ जाओ, कलमा क्या है, क्या कहते हो तुम अपनी जुबानों से? ऐसे ही नहीं है कि ये कलमा पढ़ेगा जो आखिरी जिसका अल्फाज ये कलमा होंगे वो जन्नत में दाखिल होगा, क्योंकि कलमा छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। इसी को खुदा बना लेना और मान लेना बहुत बड़ी बात है। अगर ये छोटी बात होती ना, ऐसे ही किसी जुबानों से बोलना था तो फिर काफिर अबू जहल भी बोल देता और कहता तो क्या, सो वॉट, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना तो मैं कह देता हूँ, ये कौन सी बड़ी बात है। इसी से अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुप करा सकता होता वो, तो वो कह देता। लेकिन वो भी जानते थे, इवन काफिर भी, कि ये क्या है कलमा, जो कितनी बड़ी चीज है, हमें ये पता ही नहीं है। हमने तो ना खुदा को खुदा समझा ना रसूल को रसूल समझा, इसीलिए उनकी बातों पे भी एतराज है और कुरान के हुक्मों पे भी एतराज है। और फिर देखो जरा ट्विस्ट कैसे करते हैं कुरान के हुक्मों को, फिर देखा करें आप, अगर जब उनके सामने दिखा देंगे ना, देखो ये लिखा, फिर ना ये तो उस जमाने के उसमें ऐसा होता था तो वो ऐसा होता था। वो कुत्ते उस जमाने में जो थे ना बड़े नजस थे, इसलिए कुत्ते को घर में रखने से मना किया। आज तो कुत्ते साफ सुथरे हैं, बड़े अच्छे कुत्ते हैं, तो आज तो घर में रख सकते हैं, आज रखने में क्या एतराज है। खिंजीर उस जमाने में बड़ा गंदा जानवर था, आज तो देखो कितने खूबसूरत खिंजीर हैं, पिंक कलर के, उसके ऊपर स्टोरी बुक्स में लगे होते हैं। देखिए हा हो गया हमारी अकलों को, हम किधर चले गए। आज तो मातम करना चाहिए इस उम्मत की अकल के ऊपर भी, इनको क्या हो गया। उनकी तो बातें पढ़ के हम कहते हैं, हमें तो देखेंगे हमारे अपने मुसलमान क्या बात आज कर रहे हैं, कितना जवाल आ गया इस उम्मत में, फिर हम कहते हैं हमारा हाल क्यों है ऐसा। अल्लाह अकबर। फिर देखिए कालू दू उलाना रब्बा का युबय्यिन लना माही, कहने लगे अच्छा फिर आप ऐसे करें, जाएं जाएं जाके अपने रब से पूछ के आए, वो हमें बताए कि वो फिर गाय, अब आप कह रहे हैं कि ज़िबा करो और रब का हुक्म है और आप मजाक भी नहीं कर रहे, तो जाएं फिर पूछ के आए वो कैसी होगी। अब पूछ के आए कैसी होगी, तुम्हें कहा है गाय ज़िबा करो, कैसी होगी का क्या मतलब है। काला मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया इन्ना हु यकूलू, बेशक वो फरमाता है इन्ना बकारतुन ला फारिदुन वला बिक्र, ऐसी गाय ज़िबा कर लो, कोई भी ऐसी गाय हो जो ना बहुत बूढ़ी हो ना बहुत जवान हो, बीच में, बीच यानी मिडिल एज की हो, बिल्कुल एनर्जेटिक, इतनी बूढ़ी भी ना हो कि भाई बहुत सारे बच्चे पैदा किए हुए तो वो बहुत बूढ़ी हो गई भी है, और ना ही बिल्कुल ऐसी बच्चिया हो कि बिल्कुल अभी बच्ची सी ही है। आवानुम बैना जाले, दरमियानी उम्र की, इसके दोनों के दरमियान, फालू मा तुम मारून, कर लो जो तुम हुक्म दिए गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये नहीं करेंगे और इस तरह की बातें करते रहेंगे तो ये इनके लिए मुश्किल होगा करना। आप ये देखें मूसा अलैहि सलाम को जब वो ये कह रहे हैं ना जाओ और जाके पूछ के आओ, तो ये कोई आसान बात नहीं थी। वो असल में क्या कह रहे हैं, जाओ अब मूसा अलैहि सलाम जाएंगे तूर पे, अल्लाह ताला से बात करेंगे, हुक्म लेंगे, फिर वापस आएंगे। वो कितना अपने नबी को सता रहे हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसी सूरह बकरा में आप पढ़ लीजिएगा, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अम तुरीदुना तसअलु रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन कब्ल, तुम भी इस तरह चाहते हो, तुम भी अपने नबी से इसी तरह सवाल करो जैसे मूसा अलैहि सलाम से किए गए थे, तुम भी यही अपने नबी के साथ करना चाहते हो। अब उनको इस पे भी चैन नहीं आया, भाई आके मूसा अलैहि सलाम ने क्या फरमाया इन्ना हू यकूलू, देखें ये भी हो सकता था काला इन्ना बकरतुल्ला फारिदु वला बिकर, वो ऐसी गायब नहीं, इन्ना हू यकूल, बेशक वो कहता है, वो फरमाता है, वो कौन, हू कौन, रब, तुमने कहा ना तो अपने रब से जाके पूछो, तो रब फरमाता है कि वो ऐसी है। लेकिन उनको फिर भी तसल्ली नहीं हुई, आगे से क्या कह रहे हैं, हालू दुलाना रब्बा का युबय्यिन लना मा लौनुहा, तुम दुआ करो अपने रब से वो हमें बताए कि उसका कलर क्या है। अब फिर मूसा अलैहि सलाम जा रहे हैं, तो कितना तंग कर रहे हैं अपने नबी को भी, और कैसे अल्लाह ताला के अहकामात में भी किस तरह से उनको, यानी जब मानना ना हो ना तो फिर इंसान ऐसे करता है, जाओ जाके पूछ के आओ कि वो कलर क्या होगा, उसका कलर हमें बताए। भाई जब तुम्हें कह दिया कि तुम कोई भी गाय कर लो, तो कोई भी कर लेते ना तो उनके लिए पूरी हो जाती बात, लेकिन अब कलर पूछ रहे हैं। ये ऐसे ही आप समझे कि आप अपने बच्चे को कहती हैं बेटा पानी लेकर आओ, अब बेटा कहे अम्मी ठंडा या गर्म, आप कहें चलो ठंडा ले आओ, अम्मी शीशे के ग्लास में या पीतल के ग्लास में, अच्छा चलो बेटा शीशे में, नहीं ग्लास बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए, अब आप क्या कहेंगी, आप क्या कहेंगी। अब वो बच्चा काम कर भी लेगा ना, और अगर आपसे इतने सवालात करे तो आपका क्या, यानी आपको कोई कदर रहेगी उसके काम करने की? और ये सवाल क्यों किए जाते हैं इस तरह? आप आगे से क्या कहती हैं, तुमने लाके ही नहीं देना, तुम रहने ही दो। समझ समझ जाते हैं ना हम, के बच्चे का मूड नहीं काम करने का। यहां पे भी क्यों इस तरह सवाल हो रहे हैं, मूड नहीं है काम करने का, किसी तरह टाल ही जाइए काम। बाज दफा हम भी ऐसे ऐसे सवालात करते हैं कि वो सिर्फ किस लिए होता है? अच्छा ये बताइए, वाजिब है कि मुस्तहब है? करना जरूरी है कि वैसे ही सुन्नत है कि क्या है? पता नहीं जो क्यों हमने करना जो नहीं होता। और बाज दफा ऐसे ऐसे सवाल करते हैं, करना नहीं होता वो बिल्कुल, लेकिन बस सवाल भराए सवाल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हलाक हो गए बाल की खाल उतारने वाले। बाल की खाल यानी बस पीछे पड़ जाना उसी को, अभी जो हुक्म दिया जा रहा है आप कर लो, लेकिन उसको इतना बाल की खाल उतारना, इतनी बारीकियों के अंदर उसके जाना। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफा एक आपने फरमाया ना कि हज तुम्हारे पर फर्ज किया गया, तो एक आदमी ने पूछा क्या हर साल? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने पूछा क्या हर साल? आपने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं अगर जवाब दे देता कि हाँ तो हर साल फर्ज हो जाता। फरमाया तुमसे पहली उम्मतें हलाक इसलिए हुई हैं कि वो बहुत सवाल करती थी, सवाल ना किया करो। और सहाबा इतना डरते थे सवाल करने से, कहा जाता है 20 से भी कम सवाल सहाबा ने किए किसी आयत के बारे में, पूरे कुरान जितनी देर उतरा है ना 20 से भी कम सवाल। हाँ कोई होता था, कोई वो इंतजार करते थे कोई बद्दू आ जाए और वो आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल करे तो हम भी सुन ले, इसका इंतजार करते थे, खुद नहीं सवाल करते थे। और जब नबी अलैहिस्सलाम सवाल करते थे तो आगे से क्या फरमाते थे सहाबाए कराम? अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा जानते। तो जिंदगी में एक असूल बना लेना चाहिए, बेवजह सवाल किए चले जाना ये अच्छी आदत नहीं है। देखें बनी इसराइल के ऊपर अल्लाह ताला का गुस्सा आया उनके इतने सवालों को, यहाँ पे कोट किया गया ऐसे ही बिला वजह नहीं है, कुराने पाक ऐसे ही फालतू बातों को मेंशन नहीं करता कभी, लेकिन क्यों बार बार उनके हर हर सवाल को यहाँ पे लाया गया कि अल्लाह ताला को नागवार गुजरा उनका सवाल करना कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए तो अब आगे से ये नहीं होता, अच्छा फिर ऐसे कैसे, तो ऐसे कैसे, तो कितना टाइट हो कपड़ा, कितना लंबा हो हिजाब, कितना छोटा हो, वो करना ही का मूड ही नहीं है तो फिर क्या? अभी तक तो हमें समझ ही नहीं आई इस चीज की। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कर गुजरो उसको जो अल्लाह ताला ने तुम्हें फरमाया, उसको मुकम्मल करो। तो जो सवालात है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो लायानी बातें छोड़ दें, यानी जिन बातों से आपका ताल्लुक नहीं ना उनको छोड़ दें। तो वैसे भी दीन के अलावा भी बेजा सवालात करते रहना लोगों से, ये कोई अच्छी आदत नहीं है, कोई पसंदीदा आदत नहीं। आप लोगों से सवाल करते रहे भाई, अच्छा आपके बच्चे कहाँ हैं, क्या करते हैं, वो तो कैसी उनकी गुजर रही है, अच्छा तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ अच्छा है कि नहीं है, तुम्हें क्या दिया, तुम्हारी ईद पे तुम्हें क्या तोहफा दिया तुम्हारे हस्बैंड ने फलाने के साथ, यानी तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, तुम्हारी एज क्या है, यानी ऐसे ऐसे सवालात कि जो दूसरे को इरिटेट कर दें, या दूसरा नहीं जवाब देना चाहता, या दूसरे को पसंद नहीं है कि वो आपके सामने ये चीजें डिस्क्लोज करे, उसकी कोई प्राइवेसी है, वो नहीं पसंद करता, लेकिन हम कुरेदते हैं उन लोगों की पर्सनल बातों को, इतना कुरेदते हैं, इतना उनसे पूछते हैं कि दूसरे को तंग करके रख देते हैं। क्यों? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के इस्लाम की हुसन है ये, इसकी ब्यूटी है कि वो लायानी बातें छोड़े। भाई आपका अगर ताल्लुक नहीं है उनका, कोई कैसे भी वो को दूसरा कोई खुद बता दे तो बहुत अच्छी बात, नहीं बताता तो क्या जरूरत है? और एक दफा सवाल करने से समझ आ जाती है कि दूसरे को नहीं, वो कंफर्टेबल नहीं हो रहा, जब वो मुख्तसर सा जवाब दे दे आप खामोश हो जाए। कहाँ गए, कहाँ से आए, क्या किया, किधर गए, तुम्हारे घर कौन आया, तुम किधर वीकेंड पे गए, यानी हमें क्या लगे इससे? लेकिन असल में हमारे पास कोई बात मेरे ख्याल करने के लिए होती ही नहीं है, तो हम लोगों को सवालात कर करके ही उनको तंग रखते हैं। तो कोई और टॉपिक नहीं है क्या हमारे पास? अल्लाह रसूल की कोई बात करें, कोई अच्छी बात करें जिससे दूसरे को फायदा पहुंच जाए वो बात करें, कोई नेकी भलाई की बात कर दें, या बस सवालात?
पहले उनसे ले लेनी इंफॉर्मेशन, फिर उसको डिस्कस करते रहना। फिर हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, टाइम कैसे होगा, हम ला यानी बातों में लगे रहे। सबकी खबर रखना हमारा कोई फरीजा है? तो नहीं, सवाल करने चाहिए, और दीन के मामले में तो बेजा सवालात करने से रुक जाना चाहिए। जो आपको पता चलता है, हाँ आप ये जरूर पूछ सकते हैं किस तरीके से ये काम किया जाए। आपको मसलन नमाज है, अब आप पूछ सकते हैं मुझे सिखाएं नमाज कैसे करनी है, ऐसे करना है या इसमें नहीं है ऐसे कर, वो ठीक है क्योंकि आपको समझ नहीं है, आपको पता नहीं। लेकिन किसी हुक्म के बारे में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के अब मुझे करना ना पड़े, उसके सवाल आप पूछते जाना। तो कहा, उन्होंने भी क्या अब रंग पूछ रहे हैं, काला इन्नहु यकुलु इन्नहा बकरतुन सफराउ फाकिउल लौनुहा तसुरुन नाज़िरीन। तो ठीक है, अल्लाह की तरफ से भी फिर उन्होंने एक तमाशा बना लिया था ना, अल्लाह ताला की तरफ से भी अब क्या हुक्म आया, येलो कलर की। अब येलो कलर की कितनी रेयर है, यानी ऐसा गोल्डन सा कलर हो जो कि खूबसूरत भी लगे देखने में, जो देखे तो कहे कि वाह कितनी खूबसूरत गाय है, ऐसी हो। फिर अब मुश्किल हो गई ना, क्योंकि ऐसी गाय तो ढूंढनी मुश्किल है। अब देखिए उनके एक ना दिल में भी चोर था ना, कि उनको गाय की बड़ी एहतराम इज्जत थी उनके दिल के अंदर। जैसे गाय की तो उन्होंने पूजा भी की थी, एजल की ही तो थी, बछड़े की तो पूजा की थी ना। अब करना तो नहीं चाहते थे कि गाय को जिबा करना, अब कैसे करते, इस वजह से सवालात भी इतने थे। जब काम ना करना हो तो फिर सवाल भी बहुत आते हैं ना, जब काम करना हो तो जिसको काम कहेंगे वो फौरन उठ के कर लेगा। सहाबा कराम कितने हरीस होते थे अल्लाह ताला के हुक्म मानने के लिए, कैसे हरीस थे सुभान अल्लाह के, यानी जब अल्लाह ताला ने शराब की हुर्मत का हुक्म दिया तो जिसके हाथ में भी गिलास थे उन्होंने वहीं रख दी, जिसके मुंह में भी थी, जिसने मुंह के साथ लगा दिया था उसने वहीं छोड़ दिया, जिसके मुंह में थी उसने वहीं से निकाल दी। उन्होंने ये नहीं किया कि चलो हम पहले जाके पूछें तो सही, शराब कौन सी वाली हराम है, ये वाली हराम है या हो सकता है ये वाली ना हो हराम, अभी तो पी लेते हैं बाद में पूछ लेंगे, जब अभी हमें थोड़ी समझ आई कौन सी वाली हराम की है, और पता नहीं ऐसी वाली हराम है, पुरानी हराम है कि नई वाली हराम है, अंगूर की हराम है या खजूर की हराम है, ये तो नहीं हमें पता। उन्होंने एक लफ्ज भी आगे से नहीं बोला। औरतों को जब पर्दे का हुक्म आया था, रातों रात उन्होंने चादरें सी थी और अगले दिन फजर के लिए चादरें पहन के गई थी। एक सहाबी फरमाते हैं ना कि मैंने देखा कि आज क्या बात है कि मदीना में घर घर में चिराग जल रहे हैं। वो तो चिराग नहीं जलाते थे, अंधेरे होते थे जाहिर है, इतना तो नहीं किसी के पास था, तो क्या पता चला कि पर्दे के अहकामात उतरे हैं तो रातों रात चादरें सी रही कि सुबह फजर पे जाना। उन्होंने तो ये नहीं सोचा पहले जाके सुबह कल पूछेंगे चादर लंबी हो कि छोटी हो कि कैसी हो और कैसी ना, और किस वक्त लेनी है और किस वक्त नहीं लेनी है, और कितनी लेनी है और कितनी नहीं लेनी है, और किस उम्र की औरत को लेनी होगी, और मैं तो बूढ़ी हो गई हूं मैंने तो नहीं लेनी है, और मैं तो इस एज को पहुंच गई, तो उन्होंने तो नहीं ये पूछा, बस उन्होंने सी, क्योंकि जब करना होता है ना काम तो फिर ऐसे होता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे, आपने कुछ कुछ बयान कर रहे थे सहाबा को, तो आपने किसी से फरमाया बैठ जाओ, तो एक सहाबी थे अभी मस्जिद में दाखिल हो रहे थे, हाँ उन्होंने उनके कानों में ये आवाज पड़ी ना बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। किसी ने उनसे बाद में पूछा आप यहाँ पे क्यों बैठे, फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो किसी और को फरमाया था, उन्होंने ये नहीं कहा मैं मुझे थोड़ी कहा होगा मैं तो जाता हूं। इतना अदब था, इतने हुक्म को मानने के लिए वो हरीस थे। आपको पता है किबले की जब तब्दीली हुई तो उन्होंने ये नहीं सोचा नमाज तो खत्म कर लें फिर उसके बाद, जो जब उनको एक सहाबी थे जिन्होंने आके ये इतला दी, लोग नमाज में थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नहीं थे वो नमाज में, वो तो ये सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के पीछे नमाज पढ़ के आ रहे थे, इन्होंने उन लोगों को देखा वो नमाज पढ़ रहे हैं, उनको बताया, उन्होंने ये नहीं सोचा हम बाद में पहले नमाज खत्म करें फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद मिलेंगे फिर हम पूछेंगे क्या वजह है भाई, को वजह तो पता चले क्यों ऐसे, अच्छा अच्छा कल से फिर अगली नमाज में कर लेंगे, अभी भी क्या इतनी जल्दी है नमाज में हम क्यों मूवमेंट करें। उन्होंने उसी वक्त अपनी डायरेक्शन बदल दी, सुभान अल्लाह। यानी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे थे उनकी भी इताअत देखें कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे ही मुड़ गए, और जिनको आगे इतला मिली उन्होंने भी ऐसे ही कर।
क्या बात है कि हमें इतने सवाल आते हैं और वो भी इस वक्त आते हैं जब कोई दीन की बात है। आप क्यों नहीं जाती किसी डॉक्टर के पास और आप कहती हैं पहले मुझे इसकी दवाई के बताओ, पहले मुझे इसका ये बताओ, ये कब से हुई है, कब ये इसको बनाया गया, फिर ये किसने इसको कहा कि ये इस चीज का इलाज है, कितने लोगों को इससे आराम आया है, इसकी क्या स्टडी है, इसकी क्या इफेक्ट है, आपने ये कब पढ़ी, ये कुछ भी नहीं पूछते। बस फटाफट लेके बस आके ब्लाइंडली उसको खाने लगते हैं डॉक्टर ने दे दिया। लेकिन सारे क्वेश्चन हमें दीन के मामले में आते हैं क्योंकि हमें करना नहीं है। लेकिन जब ये यकीन हो ना कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये मेरे रब का हुक्म है, अल्लाह कौन है, मेरा खुदा, उसने ये हुक्म दिया, फिर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे हम फिजिकल लॉज को मानते हैं ना, अल्लाह तल्ला ने ही वो फिजिकल लॉज भी बनाए हैं, अल्लाह ने ही शरीयत के लॉज भी बनाए हैं। समझ आई बात, मेरी बात समझ आ रही है? फिजिकल लॉज अल्लाह ने बनाए, उनको हम सबको मानते हैं, शरीयत के लॉज को नहीं मानते। फिजिकल लॉज कैसे मानते हैं? हमें पता है आग जलाती है, हम कभी भी नहीं अपना हाथ आग में डालेंगे। क्यों नहीं डाल देते? हो सकता ना जलाए आज, नहीं, लेकिन हम मानते हैं उसको। मगर शरीयत का हुक्म अल्लाह ताला ने फरमा दिया, यतीम का माल खाने वाला, उसके पेट में अंगारे होंगे, हम नहीं मानते। हम कहते नहीं कोई बात नहीं, खा लेते हैं आज, वो देखी जाएगी उस वक्त, कोई बात नहीं, तौबा कर लेंगे। हम क्यों नहीं छत से छलांग लगा देते हैं और हम कहें कि हो सकता है कि मैं नीचे ना गिरूं, मैं हवा पे ही चलने लग जाऊं, क्यों नहीं करते ये? क्योंकि आपका यकीन है कि ये लॉ है और ये ऐसे ही होगा। पानी में डुबकी लगाऊंगी, पानी में छलांग लगाऊंगी तो डूब जाऊंगी, ये पता है हमें। जिसने ये फिजिकल लॉज बनाए हैं ना, उसी ने ही शरीयत के लॉज भी बनाए हैं। जैसे ये मानने जरूरी आप समझते हैं, उसी तरह वो मानने जरूरी है। जैसे ये नहीं बदल सकते, उस तरह वो भी नहीं बदलते। ये रियल है तो वो भी रियल है, मगर चूंकि उनके कॉन्सिक्वेंस एकदम नजर नहीं आते तो इसलिए हम करते जाते। तो قال اولانا ربك يبين لنا ما هي, अब फिर वही क्वेश्चन। और देखें जो पहला क्वेश्चन था, फिर दोबारा वही क्वेश्चन, हमें बताएं तो सही वो कैसी। इन البقره تشابه علينا, गायें तो इतनी सारी हैं, हम तो कंफ्यूज ही हो गए हैं, जितनी आपने बातें बताई उनसे तो हम कंफ्यूज ही हो गए। बहुत सारी गायें हैं जो दरमियानी एज की भी हैं, जो येलो भी होंगी, जो खूबसूरत भी लगती हैं देखने में। और फिर एक बात उन्होंने कही, वह इन्ना इंशा अल्लाहु लमुहतदून, अब इस दफा अगर अल्लाह ने चाहा ना तो हम जरूर गाय को पा ही लेंगे, हमें रहनुमाई हासिल हो ही जाएगी, हम हिदायत पा ही लेंगे। और हदीस में आता है अगर बनी इसराइल इंशाल्लाह ना कहते तो कयामत तक उनको ऐसी गाय नहीं मिलती। मजाई, अब उन्होंने इंशाल्लाह जो कह दिया तो उनको मिल गई और ये काम वो कर पाए सिर्फ इंशाल्लाह कहने की वजह से। तो इंशाल्लाह कोई मजाक चीज नहीं है। बाज लोग हमारे अपने मुसलमानों में अस्तगफिरुल्लाह किसी के साथ ये वाकया हुआ कि यानी उन्होंने इंशाअल्लाह कहा तो आगे से सुनने वाले ने कहा इसका मतलब आपने ये काम करना ही नहीं है जब भी आप कह रही हैं इंशाअल्लाह। यानी हमने देखे कितना लाइट लिया है ना इंशाअल्लाह को। और यहां से ये पता चलता है कि उनको भी इंशाअल्लाह का पता था। अल्लाह ताला की मैंने आपको बताया ना जो पहचान है, जो दीन है, जो इल्म था वो उनके पास था, इंशाअल्लाह भी पता था। ऐसे नहीं था कि अल्लाह को नहीं मानते, मगर यही तो यहाँ पे बताया जा रहा है, कोई काफिर नहीं है, ये एक बिगड़ी हुई उम्मत मुस्लिमा है जिसका नक्शा हमें दिखाया जा रहा है, बिगड़ी हुई उम्मत मुस्लिमा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह हम हिदायत पा लेंगे। और हर एक को चाहिए कि जब भी किसी भी काम का इरादा करें तो इंशाअल्लाह जरूर कहें। ठीक है, इंशाअल्लाह कहने से वो काम पाए तकमील तक पहुंच जाएगा, मगर कभी दुआ के लिए इंशाअल्लाह ना कहें, ये मना किया गया हदीस में। दुआ में इंशाल्लाह नहीं कहना। मैं आपको कहूं अल्लाह आपको सेहत दे और आप आगे से क्या कहें इंशाल्लाह, ये नहीं कहना। समझ आई बात?
اور یا میں دعا مانگتے ہوئے کہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک کریں، یہ نہیں کہنا اگر اللہ نے چاہا، یہ کہیں اللہ آپ کی اولاد کو نیک کرے، اور آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ آمین، ٹھیک ہے، آمین کہنا ہے، انشاءاللہ نہیں کہنا، کیونکہ حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ جب اللہ سے مانگو تو یہ نہ کہو اگر اللہ چاہے تو دے دے، انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے چاہا تو، کیا کہو؟ آمین کہو، تو ہم آگے سے انشاءاللہ کہتے رہتے ہیں. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں اللہ آپ کو انشاءاللہ صحت دے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی اولاد کو نیک کرے گا، لیکن جب دعا دینے لگو یا دعا کرو تو اس وقت انشاءاللہ کہہ کے نہ کرو، کیونکہ اللہ کی مرضی ہے جو مرضی کرے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے اگر وہ چاہے تو، وہ تو جو چاہے گا ویسا ہی ہوگا. قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے. اب دیکھیں پھر ان کو بھیج دیا کہ جاؤ پوچھ کے آؤ، ان کو ابھی بھی نہیں تسلی ہوئی کہ، اور اب وہ آ کے پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری اس بات پہ کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ متی ہو، یعنی خدمت نہ اسے لی گئی ہو، متی نہ ہو وہ، یعنی کہ ذل ہے نا، ذلیل کی گئی، یعنی بہت اسے مشقت کے کام لیے گئے، بڑا کام کرایا گیا، کام کر کر کے وہ تو ظاہر ہے اس کے اندر وہ تو انرجی نہیں رہے گی نا، اور نہ ہی وہ پھاڑتی ہو زمین کو، یعنی ہل بھی نہ چلاتی ہو کہ کہیں ہل جوتنے میں کام آ رہی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ ہی کہیں پانی دیتی ہو کھیتی کو. آپ کو پتا نا وہ اس کے اوپر بھی تو پانی آپ نے دیکھی ہوں گی گائے وغیرہ بیل وغیرہ کے اوپر ڈنڈا سا لگا کے دونوں طرف بالٹیاں لگا دیتے ہیں، پھر وہ اس سے پانی دیتی ہیں کھیت کو، یا پانی نکالنے کے بھی کام آتی ہیں، تو وہ بھی نہ کیا ہو، یعنی کوئی کام بھی نہ کیا ہو اس نے. اب سوچے نا، اب کیسی یہ گائے ہو جس نے کبھی کام بھی نہ کیا ہو، اور مسلمت اللاشیہ تفیہ، ایسی صحت مند بھی ہے، صحیح سلامت ہے کوئی، یعنی اس میں عیب نہیں ہے، کہیں سے ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی، کہیں سے کان نہیں کٹا ہوا، اور نہ ہی اس میں کوئی نشان بھی نہیں ہے، بالکل صحیح اس کا کلر ہے، کوئی دھبے نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. اب کتنی ریسٹرکٹڈ ہو گئی ان کے لیے یہ گائے ڈھونڈنا، کہ آپ دیکھیں کوئی جوان بھی ہو، یعنی اچھی ہٹی کٹی بھی گائے ہے، خوبصورت بھی ہے، تو کسی نے اس کو کھڑا تو نہیں کیا ہوگا نا، اسے کوئی کام ہی لیتے ہوں گے، کراتے ہوئے کام، کوئی گائے کو ایسے ہی تو نہیں رکھ لیتا، لیکن اس نے کام بھی نہ کوئی کیا ہو، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بھی ہو، یہ کتنا مشکل ہو گیا ڈھونڈنا. قالوا الان جئت بالحق، انہوں نے کہا اب لائے ہو نا تم صحیح بات، یعنی اس وقت تک جو باتیں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھی، اس وقت تک جو رسول تمہیں بتا رہے تھے اس سے نہیں تمہاری تسلی ہوئی تھی. اب انہوں نے گائے تلاش جب کرنی شروع کی تو گائے ملنی نہیں، کتنی مشکل تھی ایسی گائے ملنی، ایک جگہ پہ جا کے ملی، ایک لڑکے کے پاس تھی وہ گائے، اور اس نے کہا میں نے تو نہیں بیچنی، کیونکہ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا، یہ یتیم لڑکا تھا، یہ ماں باپ کا بہت فرما بردار تھا، بہت نیک بچہ تھا، اس کا باپ ایک گائے چھوڑ گیا تھا. بہت ساری اس کے اندر روایات آتی ہیں، آپ تفسیروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ طرح کی ہیں، لیکن جو جسٹ ہے ان کی یہ ہے کہ وہ اینی ہاؤ انہوں نے گائے کو جنگل میں چھوڑ دیا تھا، چرتی رہتی یا مطلب اپنی گریز کرتی خود ہی، اور پھر وہ ماں نے ایک دن بیٹے کو کہا کہ لے آؤ تم گائے کو، وہ لے کر آ گیا، گائے بڑی خوبصورت بھی تھی. انہوں نے جب گائے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے خریدنی ہے، اس نے کہا میرے باپ کی نشانی میں تو نہیں بیچ سکتا، میں نے مجھے بیچنی ہی نہیں ہے یہ گائے، ایک ہی گائے ہے میرے پاس. انہوں نے کہا کہ بھائی تم کسی طرح کر کے بھی بیچو، اس نے کہا میں نہیں بیچتا. بھائی یہ گائے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، انہوں نے کہا بھائی تم جو مرضی کرو لیکن اب تو گائے تو وہی لانی پڑے گی کیونکہ اور تو کوئی گائے نہیں. یعنی ہاں اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے میں بیچوں گا، لیکن اتنی قیمت ہوگی کہ اس کو تولو سونے کے برابر، تب میں بیچ سکتا ہوں. کتنا مشکل ہو گیا، کہاں وہ تھوڑی سی قیمت پہ جا کے کوئی بھی گائے لے کر آ جاتے اور کر لیتے، اور کہاں یہ اب سونے میں تولنی پڑے گی وہ گائے، یعنی ایک طرف گائے تول لیں تو دوسری طرف سونا رکھیں پھر اتنی قیمت میں لوں گا، اندازہ کریں کتنی مہنگی ہو گئی وہ گائے. ایک تو گائے کو ذبح کرنا ہی ان کے لیے مشکل، اس کی تعظیم اتنی تھی، اوپر سے اب اتنی بڑی قیمت بھی دیں، لیکن اب انشاءاللہ کہہ چکے تھے تو فذبح ہوا، تو ذبح کر دیا اس کو، لیکن وما کادوا یفعلون، لگتے نہیں تھے وہ کرنے والے، کرنے کے اندر انٹرسٹڈ نہیں تھے، ان کوئی شوق سے نہیں کر رہے تھے، وہ بہت ان کو بھاگ بھاگ کے نہیں انہوں نے کیا، بڑی مشکلوں سے کیا، بہت زیادہ यानी अपनी तरफ से सर से उतारना ही चाहते थे। यानी इससे पता चलता है कि जब हम सर से उतारने वाले काम करते हैं ना, कभी कभी हम कर लेते हैं, अल्लाह के हुक्मों को मान भी लेते हैं, लेकिन बस हाय हाय करके ही बस किसी तरह, वो भी अल्लाह को पता है कि इसने किस तरह से किया है, क्या शौक में भाग भाग के मेरे लिए काम किया है, मोहब्बत के साथ किया है, अल्लाह का हुक्म है मैंने करना है, यहां बस मारे भांते का हाय हाय अब करना पड़ ही रहा है, उठना पड़ ही गया, इस तरह का किया। वमा कादू यफअलून, अब ये वो स्टेटस तो नहीं रहा ना जो कि अगर शुरू में ही हुक्म दिया जाता तो भाग के करते, अल्लाह का हुक्म आया, जब नबी ने बताया कि अल्लाह ने हुक्म दिया तुम्हें कि जिबा को करो बकरा, तो उसी वक्त कर लेते, तो वो स्टेटस एक अलग था, वो अल्लाह के हाँ मकाम एक अलग था, कर लिया, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया, वह मां का दू या फालून, करते लगते नहीं थे वो, करने वाले नहीं बन रहे थे वो, उन्होंने जल्दी नहीं की कोई करने में, बेदिल होके करा, बाची जाए किसी तरह करने से, तो कहते ना इंसान अपने आप को बचाता ही है, मगर फिर करना ही पड़ जाता तो चलो कर ही लेते हैं। अब आपने दिल नहीं चाह रहा आपका जेब से पैसे निकालने का, अब दूसरा इतना आपको जोर दे रहा है, या वो फंड रेजिंग में इतना कह रहे हैं, तो अब आप मुश्किलों से ही पर्स से निकालते हैं और देते हैं, आए अब क्या है ये खत्म हो, वो भी अल्लाह को पता होता है, पता है कि किस तरह से किसी ने काम किया, फिर अजर भी तो उसके मुताबिक ही है ना, एक वो जो भाग के करता है उसका शौक भी अल्लाह देखता है, और एक बददिली से करता है उसका भी अल्लाह देखता है, और अक्सर काम ऐसे होते हैं नेकी के खास तौर पे जो हम बहुत शौक से नहीं कर रहे होते, बस कभी किसी ने कह ही दिया तो अब कर लिया, या मजबूरी है तो अब करना ही पड़ गया, या अब क्या करें, फिर लोग भी कहेंगे कि कोई काम में आगे नहीं बढ़ती तो कर लिया, है ना। तो अब आ रही है बात, अब वो रीजन आ रहा है कि क्यों ये कत्ल किया, ये कतल ये यानी ये गाय जिबा करने का क्यों हुक्म आया, अब क्यों आया ये एंड में, अभी मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी। नंबर वन इसका रीजन ये है कि इसका मतलब अल्लाह ताला के हाँ वो कत्ल होना इतनी बड़ी बात नहीं थी, जितनी बड़ी बात ये है कि तुम अल्लाह के अहकामात को इस तरह से मजाक बना लेते हो, और नबी की तुम्हारे हाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई उनका अदब नहीं है, ये ज्यादा बड़ी बात है, इतनी लंबी देखे आयतें आई हैं और उसके बाद कत्ल की बात आई है, यानी कत्ल सेकेंडरी बात है, नबी का एहतराम पहले है, अल्लाह के हुक्मों की ताजीम पहले है, अल्लाह के हुक्मों को बजा लाना ज्यादा बड़ी बात है, वो और तुमने जो किया है वो ज्यादा बड़ा क्राइम है, वो ज्यादा बड़ा जुर्म है, कत्ल से भी बड़ा जुर्म है, नबी की को यानी ड्यू रिस्पेक्ट ना देना, उनको तंग करना, अल्लाह के अहकामात को इस तरह सवाल पे सवाल और सवाल पे बहसें कर करके अल्लाह के अहकामात को बिलिटल करना, हकीर करना, ये ज्यादा बड़ा जुर्म है, इसलिए ये पहले आई, समझ आई बाप, और किस वजह से पहले आ सकती हैं, सोचें आप क्यों ये पहले आई, क्योंकि पहले रीजन नहीं बताया गया, इसलिए कि बकरा को कत्ल करो जिबा करो बकरा को, ये पहले आया और बाद में रीजन बताया, इसका मतलब रीजन जानना, इसको प्रायोरिटी ना बनाओ कि क्या वजह है, क्यों है, क्या है, नहीं, जो हुक्म आया उसको कर गुजरो, तुम्हें समझ आए या ना आए, और अब बताया जा रहा है वजह, अब बताई जा रही है, समझाई बात, ये ऐसे ही फालतू नहीं है ये आयात, उनमें बड़ी हिकमत है। वह इस कतल तुम नफसन, और जब कतल किया तुमने एक जान को, फद्दा रहा तुम फीहा, तुम एक दूसरे को पर इल्जाम दे रहे थे, तुमने किया, वो कह रहा तुमने किया, उधर तो आग लग गई, वो तो यहां पे जंग शुरू होने लगी थी, वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला है जो थे तुम छुपाते, ये एक जनरल बात कर दी गई, ये नहीं कहा गया कि अल्लाह ताला ये कातिल को निकालेगा, अल्लाह निकालने वाला है जो भी तुम छुपाते हो, जो भी तुम छुपाते रहे हो अल्लाह उसको निकालने वाला है, क्या मतलब, नंबर वन कातिल को छुपाते थे, कातिल छुपा हुआ था, अल्लाह उसको निकाल बाहर करेगा, और अल्लाह ने उसको एक्सपोज कर दिया। लेकिन इससे एक और बात पता चल गई कि ये अल्लाह का रूल है, वो निकाल बाहर लाता है जो भी तुम छुपाते हो। नियतों के अंदर कोई फतूर है ना, ऊपर से अगर कहते हो ईमान वाले और अल्लाह ताला ने फरमाया वमिनन नासि मन यकुलु आमन्ना बिल्लाहि वबिल यौमिल आखिरि वमा हुम बिमुमिनीन। लोगों में से बड़े हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पे और रसूल पे, लेकिन अल्लाह पर और यौम आखरत पर, लेकिन वो ईमान वाले नहीं है। वो भी अल्लाह ने निकालना होता है अंदर से। वो मुनाफिकत के अंदर तो मुनाफिकत है, ईमान तो अंदर है ही नहीं। जो मुंह से बातें करते हैं वो और हैं, और जो अंदर छुपी हुई है वो और है। शैतान भी तो छुपा हुआ था ना फरिश्तों में, उसका तो किसी को नहीं पता था कि ये इबलीस है, ये शैतान है। वो तो छुपा हुआ था, अल्लाह निकाल के लाया ना उसको, क्योंकि अल्लाह को पता था कि दिलों के अंदर क्या है। वो जो तकब्बुर था, वो जो अपनी बड़ाई थी, जो अपनी अना थी, वो अल्लाह को पता था, इसलिए सब को बता दिया गया। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम, जो थे तुम छुपाते अल्लाह उसको निकालने वाला है। इसी से सब लोगों को ये नसीहत हो जानी चाहिए कि जो भी हमने दिलों में छुपाया हुआ है वो भी अल्लाह एक दिन निकाल देगा। वो नियतों के कोई ऐसी कोई चोर है अंदर, वो नियतों के अंदर कोई खराबियां हैं, वो दिलों के अंदर कोई गंद भरा हुआ है जो किसी को दिखाते नहीं है, बाहर से कुछ और नजर आते हैं, अंदर में कुछ और लगे हुए हैं, वो सब अल्लाह निकाल लाएगा। अल्लाह हमें माफ कर दे, अल्लाह हमारा जाहिर और बातिन एक कर दे, अल्लाह हमारे जाहिर और बातिन से हमें पाक कर दे। अल्लाह अकबर। फकुल नद्रिबूहु बिबादिहा, बस कहा हमने मारो इसको इसके बाज के साथ। क्या मतलब मारो इसको किसको? यानी फिर हुक्म हुआ कि जो ये मकतूल है ना, इसकी लाश को मारो इस गाय के पीस के साथ, गाय के बाज हिस्से के, बादिहा बाज इसका, किसका? गाय का। और नद्रिबू हु में हु की जमीर किस तरफ है? मकतूल की। मारो उसको मकतूल को यानी गाय के बाज हिस्से के साथ मारो। तो जब उसको उसके साथ टच किया गया तो वो जिंदा हो गया, और उसने कहा ये मेरे भतीजे ने मुझे कत्ल किया था, और ये बता के वो दोबारा मर गया। ठीक है, यानी अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी अपनी निशानी दिखाई। कदालिका युही अल्लाहुल मौता व युरीकुम आयातिही लअल्लकुम तअक्लून। ऐसा नॉर्म नहीं होता कि अल्लाह मरने के बाद किसी को जिंदा करे, लेकिन इनके आगे निशानी दिखाई ये कि वो जिंदा हुआ, वो बोला और फिर वो मर गया। क्यों ये निशानी दिखाई? क्यों गाय को जिबा करने का कहा गया? क्यों ये सब कुछ हुआ? ये अल्लाह ताला मूसा अलैहि सलाम को वही के जरिए भी तो बता सकते थे कि फलां है जिसने कत्ल किया, ये भी तो हो सकता था। या अल्लाह ताला गाय को ना कहते और सिर्फ ऐसे ही आदमी जिंदा होके बता के मर जाता। इसके अंदर पीछे मसलहतें थी। नंबर वन ये कि अल्लाह ताला उनके दिल से गाय की मोहब्बत को जायल करना चाहता था। जिसको वो इतना एहतराम देते हैं उसको अपने हाथ से जिबा करवा, जिबा करो ताकि तुम्हारी इसके साथ जो ताजीम है और ये खत्म हो कि हम हाथों से अपने इसको मार रहे हैं। एक ये बात हुई, और दूसरा इन लोगों के अंदर कयामत के दिन जी उठने का जो अकीदा था वो कमजोर था। अल्लाह ताला उनको दिखाता है कि देखो जैसे अल्लाह ने इस मुर्दा को जिंदा किया ना, अल्लाह ताला इसी तरह कयामत में जिंदा करेगा। और सूरह जो बकरा है ना, इसके अंदर 5 दफा आएगा मौत के बाद जिंदा होने का जिक्र। 5 वाकयात आएंगे इसके अंदर। एक वाक्य आप पहले पढ़ चुके हैं, कौन सा है वो वाक्य जिसमें अल्लाह ने मुर्दा को जिंदा होने का दिखाया? कुछ याद है आप लोगों को? जो वो 70 बुजुर्गों को मूसा अलैहि सलाम लेकर गए थे और उनको मर गए फिर अपने सवाल की वजह से। तुम बाथना को मिम्बादी मौती को, अल्लाह तला ने फरमाया ना मैंने तुम्हें जिंदगी दी मौत के बाद, यहां पे भी अल्लाह तला ने इसको जिंदा किया। फिर आगे 3 और वाकयात आएंगे जिंदा करने के, जो कि नॉर्म नहीं है, अल्लाह का तरीका नहीं है, लेकिन इनको अल्लाह ने मौजज़े दिखाए। सुभान अल्लाह,
इनके आगे मौजज़े ही रखे, इन्होंने अपनी आंखों से देखा मुर्दा जिंदा हुआ, तो अल्लाह इसको जिंदा कर सकता है तो सारी इंसानियत को जिंदा कर सकता है। तो हम कहें हमें तो नहीं कुछ, हमने तो नहीं किसी को जिंदा होते देखा। आप सोचें कि उनका तो अब इस किस्म के मौजज़ों की हमें जरूरत नहीं, उनका तो एक ऐसा दौर था जिसमें उतनी समझ थी। आज अल्लाह ने हमें वो चीजें दिखा दी है ना कि अल्लाह को पहचानना और मौत के बाद जिंदगी देखना कोई मुश्किल नहीं रह गया। आप एक अंडे को ही देख ले, अंडा आप फ्राई करते हैं तो खा लेते हैं, उसी अंडे से चूजा निकल आता है। वो क्या है अंडा, आपने तो खोल के भी देख लिया इसमें क्या है, उससे एक लाइफ निकल रही है। अब पता है साइंसदान कहते हैं ये पेंसिल है ना, पेंसिल आप इसको उल्टा खड़ा कर दें, उल्टा खड़ा करते हैं, और उन्होंने कहा कि 1 अरब साल तक ये पेंसिल ऐसे खड़ी रहे बगैर सहारे के, बगैर सहारे के वो अपनी नोक पे सीधी खड़ी रहे। इससे भी ज्यादा, कितना बारीक है ना ये बात, इससे भी ज्यादा बारीक है पूरी कायनात का सिस्टम जो चल रहा है, इतनी बारीक उस पे चल रहा है। आप क्या सोचते हैं ये पेंसिल ऐसे खड़ी रह सकती है, नहीं रह सकती ना। कायनात को इसका मतलब कोई चलाने वाला है ना, कोई है जो इसका इंतजाम कर रहा है, इससे भी ज्यादा, यानी पॉइंट 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 0.0001% पे भी जाके कोई चीज में फर्क आ जाए तो कायनात दरहम बरहम हो जाए। हम देखते हैं ग्रेविटी क्या है, हम देख रहे हैं सियारे सितारे सूरज, इनकी चीजों को अब हम जान पाए हैं, हमारे सामने ये चीजें हो रही हैं, अब साइंटिफिक फैक्ट्स हमारे सामने आए, और हमें क्या और देखना। अब उस वक्त का इल्म इतना नहीं था तो उनको इसी तरह दिखाया गया, और ये वह युरीकुम आयाती ही, और वो दिखाता है तुमको अपनी निशानियां इस तरह लअल्लकुम ताकिलून, ताकि तुम अकल से काम लो, तो अपनी अकल इस्तेमाल करो कि इस तरह ही अल्लाह जिंदा करेगा, इस तरह ही अल्लाह के आगे खड़े होना एक दिन। ईमान बिल गैब, अल्लाह ताला के पास ये पावर है, इस जिंदगी के बाद एक और जिंदगी है, उस दिन की तैयारी करनी है, फिर उसके बाद एक कंक्लूजन है, और इस कंक्लूजन के अंदर बताया गया कि देखें मसला कहां पे होता है। मसला ये नहीं है कि उन्होंने क्वेश्चन क्यों किए या उन्होंने तावीलें क्यों निकाल लिया, प्रॉब्लम ना कहीं और है, प्रॉब्लम ना सीने के अंदर है, दिल में। ये दिल करप्ट जब हो जाता है ना, ये दिल जब सख्त हो जाता है तो वहां प्रॉब्लम आती है, फिर ये सारे ही काम होते हैं, फिर सवाल भी बहुत होते हैं, फिर तावीलें भी होती हैं जब दिल सख्त होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बादी ज़ालिका फाहिया कल हिजारती औ अशद्द कसवा। ये बहुत ही खूबसूरत आयत है, क्या फरमाया, फिर दिल सख्त हो गए तुम्हारे मिम बादी जालिका, इसके बाद, किसके बाद, इस वाकये को देखने के बाद, इतने बड़े मोजे को देखने के बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए। होना क्या चाहिए था, ये वाकया देखने के बाद समय ना वाता ना होता, अल्लाह तूने हमें ये इतना बड़ा ये वाकया ये चीज दिखा दी, उसके बाद और दिल सख्त हो गए, बजाय मानने के और ज्यादा हट धर्म हो गए। बल्कि इनके दिल कैसे हो गए, कल हिजारा, हिजारा की तरह, पत्थरों की तरह, औ अशद कसवा, या पत्थरों से भी ज्यादा सख्ती में। औ का माना बाज़ उलमा कहते हैं यहाँ पे बल के मानों में, यानी बल्कि बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त हो गए, या दूसरा माना हो सकता है कल हिजारा, या फिर बाज के हिजारा से भी ज्यादा सख्त, क्योंकि हिजारा भी जो है ना, पत्थर भी जो है, पत्थरों की मिसाल यहाँ पे असल में दिलों के साथ दी गई, सुम्मा कसत कुलूबों को इबादत फाहिया कल हिजारा, जैसे हिजारा होते हैं, जैसे पत्थर होते हैं ऐसे इनके दिल सख्त हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा शदीद, क्योंकि पत्थर भी कैसे होते हैं, पहले आयत को समझ लें, क्योंकि पत्थर भी कुछ कैसे होते हैं, वह इन्ना मीनल ही जारत, मीनल यानी पत्थरों में से भी कोई बाज पत्थर ऐसे होते हैं, सारे नहीं, बाज पत्थर ऐसे होते हैं लमा या तफज्जरु मिनहुल अनहार, कि उनमें भी ऐसे हैं कि फूट पड़ती हैं इससे नहरें। आपने कोई देखे है ऐसे पत्थर, आप देखते हैं बाज दफा नहरें आ रही होती हैं, वो कहते हैं पानी का पता ही नहीं चलता कहाँ से, पहाड़ों में से आ रहा है और किधर से चल रहा है, पसाता ही जा रहा है, नहरें चल रही होती हैं उससे, وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, इनमें से कोई ऐसे भी पत्थर होते हैं जिन जो फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है. बाज दफा आप देखते हैं, मैं तो मैंने देखा भी हुआ, ऐसे यानी रॉक्स हैं और अंदर से पानी निकल रहा है, सुभान अल्लाह. तो समझ ही नहीं आती कि इसके अंदर से किधर से आ रहा है पानी, और आप हैरान होते हैं जैसे चश्मा टाइप ऐसे बह रहा है. नहरों की तरह तो नहीं है लेकिन इस वजह से भी पानी निकलता है. वह इन न मिन हलमा यह भी तुम इन खशियत ला, और इन पत्थरों में भी ऐसे बाज हैं, यानी तुमसे तो पत्थर ही अच्छे हैं कि उनमें भी बाज ऐसे हैं जो गिर पड़ते हैं अल्लाह ताला के डर से, उसके खौफ से. यानी आप देखें, मिन हा इनमें से, सब नहीं, इनमें से, यानी लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है ना, आपने कहीं कहीं देखे, मैंने तो साइन बोर्ड्स भी देखे हमारे तो यहाँ पे बाज जगह पे लगे होते हैं फॉलिंग रॉक्स, तो उससे वो अवेयर कर रहे होते हैं कि यहां से ऊपर से पहाड़ से गिर सकती है कोई रॉक, तो उनकी वजूहात हो सकती हैं. लेकिन कुरान में एक वजह उसकी ये बताइए कि अल्लाह के खौफ से गिरते हैं, अल्लाह का डर इनके अंदर इतना होता है कि वो गिर पड़ते हैं. कि अल्लाह ताला ने बताया कि देखो, हम ना जब सख्ती का, हार्डनेस का कोई सोचते हैं अपने जहन में, तो क्या चीज जहन में आती है, कोई हार्ड चीज का आपने कोई एग्जाम्पल देनी हो तो आप किसकी एग्जाम्पल देते हैं, पत्थर की, चिटान की, हम कहते हैं चिटानों की तरह. लेकिन फरमाया उन रॉक्स के अंदर भी देखो कि कितनी ऐसी हैं कि जिन जो जो ऐसे फूट पड़ती है, फजर है ना, बड़े पैमाने पे फूट पड़ना, उनमें से भी नहरें निकल आती हैं, वो भी ऐसी हैं कि जो फट पड़ती हैं जिसमें से पानी निकल आता है, वो भी ऐसी हैं जो गिर जाती हैं अल्लाह के खौफ से. तुम ना तो अल्लाह की आयतें सुन के पढ़ के फट पड़ते हो कि तुम्हारी आंखों के चश्मे जारी हो जाए, ना तुम ऐसे हो कि तुम्हारे आंखों में से कोई एक आंसू का कतरा निकला है, ना तुम ऐसे हो कि तुम गिर पड़ो आजी में कि सजदे में चले जाओ. तुम आजिज कर लो, अपने आप को झुका लो अल्लाह के आगे. इतने सख्त दिल कि इंसान का दिल जब सख्त होता है ना, तो वो कहते हैं, हम ना मुहावरे में बोलते, हम मुहावरा नहीं, हम एक लफ्ज बोलते हैं ना, हम कहते हैं बड़ा संग दिल है, कहते हैं ना संग. संग क्या चीज होती है पता है आपको? पत्थर. या हम कहते हैं, वैसे भी कह देते हैं, पत्थर दिल है. पत्थर को ना बेइज्जत करो इन दिलों के साथ कह के, क्योंकि अल्लाह ने तो बता दिया पत्थर भी अच्छे हैं, कई पत्थर भी अच्छे हैं दिलों से. ये दिल इतने सख्त हैं. कुरान पढ़ा जाता है, कुरान की क्लासेस होती हैं, कुरान सीखा जाता है, उसके बाद भी सख्ती है, उसके बाद भी दिल नरम नहीं होता, उसके बाद भी दिल में नेकी का शौक नहीं पैदा होता, उसके बाद भी अगर परवाह नहीं रहती अल्लाह के हुक्मों की, टूट रहे हैं तो टूटते रहे, हमें क्या इससे, तो वो तो फिर पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो गए. क्योंकि पत्थरों में भी एक हिस है, पत्थर भी कुछ समझते हैं, पत्थर में भी खुदा का खौफ है, वो भी कुछ रिएक्ट करता है, तुम में तो कुछ भी नहीं रहा. क्योंकि देखिए, जो जैसे एक नरम जमीन होती है ना, नरम जमीन जब होती है तो बारिश पड़ती तो क्या होता है, सब्जा उगता है उसमें से, उसके अंदर आप देखते हैं कि फूल उगते हैं, फसलें उगती हैं. लेकिन वो सारा कुछ एक तरफ होता रहे, दूसरी तरफ आप देखें बारिश बरस रही है एक चट्टान पे, उसके ऊपर बरसती रहे, चाहे 100 साल बरसती रहे, वो तो वैसी की वैसी रहती है, उसके अंदर नहीं कोई असर होता. लेकिन अल्लाह ताला ने बताया कि लेकिन कुछ चट्टानें ऐसी हैं वो फिर भी फट जाती हैं, लेकिन कुछ दिल ऐसे हैं वो फिर भी नहीं फटते, यानी इतने हार्ड हो चुके हैं. जो चीज हार्ड हो जाती है ना, आप देखिए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, आप उसको मारें, आप उसको फेंकें, आप उसको कुछ भी करें, आप उसको कितनी भी उसके ऊपर पानी बहाएं, क्या कुछ, वो हार्ड है, उसमें कुछ जाना ही नहीं. तो कुछ दिल भी इतने हार्ड हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं जाता. ऐसे दिलों का क्या हाल होता है फिर, कि ना उनको नेकी को कोई चीज का कोई शौक होता है, ना उनको लोगों के ऊपर कोई रहम आता है, किसी की मुसीबत देख के उनको नहीं कोई परवाह के कोई मर रहा है जी रहा है, हमें से क्या, हमें बस अपना अपना आप सही रखना है बस. उनको अल्लाह के अहकामात की कोई परवाह नहीं होती, नेकियां उनको बोझ लगती हैं, गुनाहों को करने में उनको कोई शर्म नहीं आती, बेहिस हो जाते हैं, बेहिस. ना इंसानियत के लिए उनके अंदर कोई खैर होती है, ना अल्लाह ताला के अहकाम के लिए उनके दिल में कोई जगह होती है. ये दिल हार्ड है. और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बदबख्ती की अलामात बताई कि बड़ी, हम कहते हैं ना बदबख्ती है, हाय बेचारे पास पैसे नहीं है, लेकिन आपको पता है ये बदबख्ती नहीं है। बदबख्ती की जो अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई, फरमाया कि बदबख्ती की चार अलामतें हैं। चार अलामतों में एक अलामत क्या है, जमूदुल आइन, आंख का जमूद, यानी आंख बहे नहीं, आंख जामिद हो जाए, आंख से आंसू नहीं बहते, तो इसका मतलब समझ लो दिल बदबख्ती है। और नंबर टू, दिल का सख्त हो जाना। नंबर थ्री, लंबी उम्मीदें। नंबर फोर, दुनिया की मोहब्बत। ये बदबख्ती की अलामतें हैं। तो इंसान का दिल भी इतना ज्यादा, अगर जो जो पैसे अल्लाह ने नरम बनाया है, लेकिन अगर वो गुनाहों की वजह से या तावीलें करने की वजह से या अल्लाह ताला के अहकामात को सुन सुन के भी उसके बाद जब इंसान अमल नहीं करता तो दिल सख्त हो जाता है, इसकी वजह से सख्त हो जाता है, तो उसकी उसको एक इबरत दिखाई गई कि देखो तुम तो पत्थरों से भी ज्यादा गए गुजरे हो गए। क्योंकि अच्छा, पत्थरों की मिसाल से दिलों का भी एक मुआवजना किया है यहाँ पे, किया कि पत्थर बाज ऐसे पत्थरों की तरह बाज दिल भी होते, बाज जैसे पहली हम एग्जाम्पल लें तो बाज पत्थर ऐसे होते हैं जिनमें से नहरें फूट पड़ी, यानी बाज दिल भी ऐसे होते हैं वो लगता है कि बड़े सख्त हैं, लेकिन वो जैसे उनके अंदर कोई चीज होती है, जब वो फटते हैं ना तो नहरें बह पड़ती हैं, जब यानी वो फटने को तैयार होते हैं, जब वो फटते हैं तो इतनी खैर निकलती है उनसे, नहर देखे ना कितनी खैर लाती है, नहर जहां जहां जाती है वहां पे लोगों को खैर ही पहुंचाती है। लेकिन ना नहर तो जन्नतों की भी नहरों का जिक्र किया गया, और नहर ऐसी चीज होती है इंसान कोई उससे फायदा नहीं भी ले रहा, उसको देख के भी मजा आता है, अच्छा लगता है। तो कई लोग ऐसे होते हैं उनकी खैर हर तरफ फैलती है, वो जिधर जाते हैं खैर का सामान होते हैं, जिधर जाते हैं अपनी जात से लोगों को खैर पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, में ऐसा बना दे, वो लगते थे कि ये तो सख्त है, लेकिन वो जब फूटे तो देखो कहां तक उनकी खैर पहुंची। और कई दूसरे हैं उनकी नहरों की तरह तो नहीं है, लेकिन वो शक हो जाते हैं, फट जाते हैं। फटता कब है पत्थर, जब उसको फिर बहुत जोर से कोई चोट लगे तो वो फिर फट जाता है। ठीक है, तो इनकी जिंदगी में भी कोई ऐसा हादसा, कोई ऐसी मुसीबत, कोई ऐसी परेशानी, कोई ऐसी चीज किसी ने बोल दी है या कुछ ऐसी आती है जो उनको तोड़ देती है। आप देखें, हम मुसीबतों को बुरा तो समझते हैं, लेकिन बाज मुसीबतें भी ना इंसान को अल्लाह से करीब कर देती हैं। आपने देखा नहीं कई लोगों के ऊपर कोई ऐसे हादसात आते हैं, मसलन है कि किसी प्यारे की वफात हो जाती है, या कोई उनके साथ बेवफाई करता है, या उनको सब छोड़ के चले जाते हैं, तो तब उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो है फयखरुजु मिनहुल मा, फिर वो कहते हैं अल्लाह सिर्फ तेरी जात ही है जो अपनी है, बाकी कोई अपना नहीं, अल्लाह सब अपने अपने चले गए रास्ते में, अल्लाह किसी ने ना मुझे पूछा, एक अल्लाह तू ही है मेरा सहारा, तूने नहीं मुझे छोड़ा, सबने छोड़ दिया। तो छोड़ना लोगों का, उनके लिए मुसीबत तो थी, तकलीफ तो थी, लेकिन उस तकलीफ ने उनको क्या कर दिया, अल्लाह के करीब कर दिया, उनकी आंखों ने आंसू बहाए, वो अल्लाह से और ज्यादा उनका ताल्लुक मजबूत हो गया। लेकिन ये हादसा ना होता तो वो पत्थर ही थे, उनको परवाह नहीं थी, वो किसी को अल्लाह की बात को कोई नहीं समझते थे कुछ, वो बेपरवाह थे, लेकिन अंदर कहीं खैर थी, वो दुनिया में मगन थे, अपने हंसने खेलने बोलने इसके अंदर थे, लेकिन एकदम अचानक जब उनके ऊपर कोई चीज पड़ी ना तो इसने उनको बड़ा कुछ सिखा दिया। तो बाज दफा हादसे भी मुसीबतें भी इंसान के अंदर जलजला पैदा कर देती हैं, इंसान नया इंसान बन जाता है। तो आप देखते होंगे लोगों के ऊपर, बाज लोग तो हादसात पे भी नहीं कुछ सीखते, बाज लेकिन ऐसे होते हैं कि हादसात उनको जो है ना बहुत अल्लाह के करीब कर देते हैं। कोई मुसीबत ऐसी आती है, मसलन ऐसी मुसीबत आई कि घर में फाके होने लगे, तब अल्लाह याद आ गया, ऐसी मुसीबत कोई आए कि कोई किसी प्यारे की जुदाई हो गई, तो तब अल्लाह याद आ गया, तब फिर वो अल्लाह की तरफ उन्होंने रुख कर लिया, और फिर उसके बाद उसी उसकी तरफ ही अपना रुख रखा। तो ऐसे भी होते हैं।
وَإِنَّا مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، وہ ویسے کہیں نہیں جھکتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے حکم ان کو پتہ چلتے ہیں تو اللہ کی ہیبت ان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے، جب اللہ کو پہچانتے ہیں وہ تو اس کے بعد وہ جھک جاتے ہیں، ویسے وہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے اندر بڑے وہ تھے کہ سخت تھے، لیکن جب اللہ کی باتیں ان کے سامنے آئیں تو پھر انہوں نے کہا کہ بس اللہ کی خاطر میں کسی انسان کے ساتھ نہیں یہ کر رہی، وہ کوئی لوگ ان کو دکھ دیتے ہیں، کوئی لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں، ان کا نہیں دل کرتا ان کے ساتھ کوئی خیر کرنے کا، لیکن پھر ان کیا چیز ان کو جھکا دیتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ تو ایسے ایسے بھی پتھر ہیں، لیکن جو کوئی ان تینوں میں سے ہی نہیں ہے وہ تو پھر اشد قسوہ ہے، پھر اشد قسوہ یہاں پہ جو کہا گیا نا، یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل کے لیے کہا گیا، کہ ان کی سختی تو پھر پتھروں سے بھی زیادہ آگے نکل گئی۔ اب ہم دیکھیں کہ ہمارا دل ان میں کون سا ہے، یا ہم پہلی والی حالت کے ہیں، دوسری والی حالت کے، تیسری والی حالت کے، نہیں، ان میں کہیں پہ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ تین مواقع پہ اپنے دل کو جائزہ لو، یہ تمہارا دل لگتا ہے کہ نہیں؟ ایک ذکر کی مجلس میں دل لگتا ہے نہیں، ایک قرآن پڑھتے ہوئے دل لگتا ہے نہیں، ایک تنہائی کے اوقات میں تمہیں اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہاں پہ کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہو رہا تو پھر دل مانگنا چاہیے اللہ سے، کیونکہ دیکھیں ہم نا یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی، عقل میں تو ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں، مثلا کس کو نہیں پتا کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سب کہتے ہیں سب کہتے ہیں، پھر بھی کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ جب دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہاں پہ نہیں سچ چلے گا، یہاں پہ تو جھوٹ ہی بول، تیری عزت رہے گی۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں بات تو سمجھ آ گئی ہے مجھے ساری، لیکن دل نہیں مانتا، پرابلم نا دل میں ہوتی ہے، لیکن میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اب بات سمجھ آ گئی ہے، حکم بھی اللہ کا ہے، سب کچھ ہے، وہ دماغ کہہ رہا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، بات لوجیکل ہے، آیتیں بھی پڑھ لی ہیں، حدیث بھی سامنے آ گئی ہے، لیکن پرابلم کہاں پہ آتی ہے؟ دل کی تو پرابلم ہوتی ہے، دماغ کی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سمجھ نہیں آئی، بھی سمجھ آ جاتی ہے، دماغ سمجھ کے لیے، لیکن دل ہے جو رکاوٹیں ڈالتا ہے۔ جب تک دل نہیں مانتا تب تک انسان کام نہیں کر پاتا، تو اصل چیز تو پھر دل پہ ورک کرنے کی ہے نا، یہ اس کو خالص کیا جائے، اس کو پیور کیا جائے، اس پہ ورک کیا جائے سب سے زیادہ، کیونکہ پھر جو دل نہ دیکھیں اب نہ حادثوں سے مانتا ہے، نہ جو دل اس کے اوپر اللہ کی آیات کا کوئی اثر ہوتا ہے، نہ کوئی جو معجزات دیکھ کے اس کو کوئی سمجھ آتی ہے، یہ بھی تو معجزہ ہے، قرآن معجزہ ہے، جیسے ان کے لیے گائے کے ٹکڑے سے وہ آدمی زندہ ہوا تھا، اس قرآن سے بھی وہ بھی معجزہ تھا نا، معجزہ تھا نا ایک، یہ قرآن بھی معجزہ ہے، اس سے بھی دل زندہ ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی کا دل اس سے بھی زندہ نہیں ہوتا تو کیا اس کا حال ہو گیا، پھر کس جگہ تک وہ پہنچ گیا پھر؟ تو اصل چیز کیا ہے، اپنے دل پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، یہ دل میرا کہاں ہے، کیا ہے میرے دل کی حالت، کے کیا میرا دل ہارڈ تو نہیں ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طریقے پھر بتائے ہیں کہ دل اگر کس سختی کی پہ کیا کیا جائے، توبہ استغفار بہت کی جائے، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا جائے، قرآن بہت پڑھا جائے، نیکوں کی مجلس میں بیٹھا جائے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے، یتیم کو ڈونیشن دے دینے سے دل نہیں نرم ہو جاتا، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا کہا گیا، لیکن سبحان اللہ کتنی حکمت ہے نا احادیث میں بھی، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، ہاں یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا وہی کر سکتا ہے جو یتیم سے ان کانٹیکٹ ہوتا ہے، کانٹیکٹ کرتا ہے اس سے، اس کا حال احوال پوچھے گا تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا۔ دوسرے آپ کس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ جس سے محبت کرتے ہیں آپ، اس سے محبت کرو، آپ اس سے محبت کریں، کبھی پیسوں سے زیادہ اس کو آپ کی محبت اور آپ کی طرف سے ایک توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ اور مصیبت زدہ، بیمار، جو دکھی ہیں ان کو وزٹ کریں، ان کے پاس بیٹھیں، اس سے بھی دل نرم ہوتا ہے۔ دل کی سختی تو بڑی بدبختی ہے، بہت سخت بدبختی، بڑی بدقسمتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھیں یہ اس میں ایک ریمیڈی بھی ہے،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के जिक्र के सिवा ज्यादा बातें ना किया करो, कि कलाम की कसरत बहुत ज्यादा बोलना ना ये दिल को सख्त कर देता है, और सख्त दिल वाला अल्लाह से दूर होता है, यानी या तो अल्लाह का जिक्र करो वरना अल्लाह के जिक्र के सिवा बहुत ज्यादा बातें ना करो, क्योंकि वो जो बातें करना है वो दिल को सख्त कर देगा, और अल्लाह ताला से सबसे ज्यादा दूर कौन है? सख्त दिल वाला। अस्तग़फिरुल्लाह। एक और हदीस में आता है बहुत ज्यादा हंसा ना करो, क्योंकि हंसना भी दिल को मुर्दा कर देता है, मुर्दा हो जाता है दिल। अल्लाह अकबर। तो क्या हमें इसके इलाज क्या मिला? तौबा, कुरान। अब देखिए कुरान से तो सुभान अल्लाह, सूरह हशर में जो आता है लहू अनजलना हादल कुरान अला जबलिन लराई तो खाशिय मुतसद्दिअ मिन खशियत अल्लाह। ये कुरान तो हम किसी पहाड़ पे भी उतार देते ना तो वो भी अल्लाह के खौफ से गिर जाता, टूट फूट जाता वो अल्लाह के डर की वजह से। तो अगर ये कुरान सुन के भी ना हमारे दिलों को असर नहीं होता ना, तो समझ लें कि फिर बुरा हाल हो चुका। अल्लाह ताला ने फरमाया अलम यानी लिल्लदीना आमनु अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। अभी तक क्या वक्त नहीं आया ईमान वालों के लिए कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र से डर जाएं? वमा नज़ला मिनल हक, ये सूरह हदीद में है, और जो अल्लाह ने हक उतारा है, वला यकूनु कल्लदीना उतुल किताब, उनकी तरह ना हो जाना जिनको किताब दी गई, मिन कबल, पहले तुमसे पहले उनके पर किस किताब आई थी, फतौला अलैहिमुल अमदु, उनके ऊपर जब मुद्दत लंबी गुजर गई, फकसत कुलूबुहुम, तो उनके दिल सख्त हो गए। उनके पास अल्लाह का कलाम आया था लेकिन पढ़ते रहे उसको, उसके बाद उनका क्या हाल हुआ? दिल ही उनके सख्त हो गए। और कसीरुम मिनहुम फासिकून, उनमें से अक्सर फासिक हैं। मैंने बताया कि इनकी तरह ना हो जाना, इनके तो दिल सख्त हो गए थे। तुम अपने दिलों की सख्ती से बचना, उन कामों से बचना जिनसे दिल सख्त हो जाते हैं। हार्ड दिल ना बेहिस दिल है, फिर जरा हार्ड दिल होगा तो कुरान जितना मर्जी पढ़ते रहो, कोर्स पे कोर्स करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ना। फिर वो दिल के अंदर जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा ना, वो हार्ड एज अ रॉक है, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो फिर पहले इसको नरम करो, इसीलिए जब नसीहत भी आप करें ना, उसका दिल पहले नरम किया करें। ऐसे ही उस किसी के ऊपर बात करते जाएं, उसका दिल अगर सख्त हुआ हुआ है तो उसको क्या आपकी नसीहत का असर होगा? तो सोचें, ये बात को सोचने की जरूरत है कि इन पत्थरों पे भी अगर असर हो जाता है, इन पत्थरों में भी इतनी हिस है कि ये अपना अल्लाह को पहचानते हैं। ये ना समझे कि पत्थर को समझ नहीं आती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मैं अभी तक उस पत्थर को जानता हूं जो मुझे, जब मक्का में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करता था। इन पत्थरों की भी तस्बीह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सुनाई थी। तो हिजरे अस्वद देखें, गवाही देगा कयामत के दिन, तो ये इन पत्थरों में भी हिस्सा है, ये भी अल्लाह को पहचानते हैं। लेकिन क्या मेरा दिल इनसे भी ज्यादा गया गुजरा हो गया? ये इनके अंदर भी कोई चेंज आती है कि मेरे अंदर कोई चेंज नहीं आनी? अगर दिल बदलता ही नहीं है, अगर जिंदगियां बदलती ही नहीं है कुरान सुन के, समझ जाए कि दिल सख्त हुआ हुआ है, कुछ और वजह नहीं है, कहीं गफलतें हैं, तो तुम गाफिल हो जाओ। लेकिन अल्लाह फरमाता है वमल्लाहु बिगाफिल अम्मा तअमलून, अल्लाह नहीं है गाफिल जो तुम अमल करते। अल्लाह को सब पता है, अपने दिलों का जायजा लो, अल्लाह को सब पता है जो दिलों के अंदर भी है। इसके बाद तो अमल की फिक्र लग जानी चाहिए कि अल्लाह गाफिल नहीं है मेरे अमल से। अल्लाह अकबर। तो उनकी तो बात हो गई, लेकिन अपने ऊपर जरूर हमें सबको वर्क करने की जरूरत है कि कैसे हमारे दिल नरम हो सकते हैं, क्या हम करें इन दिलों की नरमी के लिए। दिल जितना नरम होगा ना, उतना अल्लाह की बात को जल्दी अब्जॉर्ब करेगा, उतना झुक जाएगा, उतना आंखों से आंसू भी बहेंगे और बदलेगी जिंदगी। और जितना सख्त होगा फिर टस से मस नहीं होना इसमें, चाहे सो पूरा कुरान आप खत्म कर लें, फिर बस रटने ही है, फिर रट 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 के आगे चलते जाएंगे और कोई चेंज नहीं आएगा फिर। ठीक है। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون